السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. پوری دنیا میں انسانیت پھیلی ہوئی ہے، اور وہ انسان ہے، جہاں جائے انسان ہی انسان ہے، کوئی کس روپ میں، کوئی کس رنگ میں، کوئی کس نسل میں، کوئی کس زبان میں، ساری انسانیت اور سارے انسان کتنے زیادہ ہیں، ان تک ہمارا پیغام، ہمارا میسج کہ انہیں سکھ مل جائے، چین مل جائے، راحت مل جائے، اور دنیا آخرت کی عزتیں، کامیابیاں مل جائیں، کیسے پہنچے اور کس طرح پہنچے، ان کی زندگی میں خیریں کیسے ہوں، عافیتیں کیسے ہوں، برکتیں کیسے ہوں، ان کے مسائل کیسے حل ہوں، ان کی مشکلات کیسے دور ہوں، ان کی ناکامیاں کیسے ختم ہوں، ایک سوال ہے. اور یہ سوال وہ شخص سوچے گا جو اپنی ذات سے باہر نکلے گا، اپنی ذات سے، میرا گھر، میری اولاد، میرا رزق، میرا سکون، میری راحت، میری چاہت. یہ ایک سوال ہے، یہ ایک زندگی کا نظام ہے جو پہلے دن سے ماں باپ سکھاتے ہیں کہ میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. ایک آواز کانوں میں آتی ہے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں، ایک آواز آتی ہے کانوں میں کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں، اور وہی چیز بچہ لے کے ساری عمر چلتا ہے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں، وہی چیز بچہ لے کے ساری عمر چلتا ہے، اور وہ بچہ پھر جوان ہوتا ہے، پھر جوان سے اکھیڑ عمر میں، اور پھر بڑھاپا. اس کے اوپر ایک پیغام ہے جو پہلے دن سے اس کے والدین اسے سکھاتے ہیں کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں، اور اس بڑا ہو کے کیا بننے میں جو راز ہے، وہ راز ہے کہ صرف میری ذات، بس میں بڑا ہو کے کیا بنوں. اپنا اس سوال کی گہرائی میں جائیں. ماں باپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے یہ بنے گا، یا پوچھتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہو کے کیا بنو گے. اس سوال کے اندر ایک جواب ہے کہ وہ ہے میں اور میری ذات. اگر آپ دنیا دیکھیں اور دنیا پھریں تو انسانوں پہ احساس اور ترس آئے گا اور رحم آئے گا. تسبیح خانہ ترس اور رحم سکھاتا ہے، نفرت نہیں سکھاتا. وہ جتنا گندگی میں لتھڑا ہوا ہو، جتنا اس نے بے حیائی کو اور حیا کی چادر کو تار تار کیا ہوا، اس کے بارے میں احساس آئے، اس کے بارے میں ایک درد آئے گا، ایک غم آئے گا، نفرت نہیں آئے گا. پہلے دن سے ہمارا سبق کمزور ہے کہ اولاد کو پوچھا اور سکھایا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، سبق ہی کمزور ہے ہمارا، سبق ہی کمزور ہے. یعنی اس کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تو نے بڑا ہو کے کیا بننا ہے، بس صرف تیری ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے معاشرے میں. اور پھر وہی بچہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ماں کو بھولتا ہے اور باپ کو بھولتا ہے اور خونی رشتوں کو بھول جاتا ہے. عہدہ، دولت، مال، کرسی، کوئی چیز ملے، سب سے پہلے خونی رشتوں کو بھولتا ہے. میرے پاس واقعات کی واقعات، تجربات کی تجربات، اور زندگی کے موضوعات بھرے ہوئے. مائیں سسک رہی ہیں، رو رہی ہیں، باپ، رشتے دار. میں ایک عہدے کا نام نہیں لیتا. ماں باپ بیٹھے تھے اور بیٹا جو ہے तरक्की करते हुए किसी ओहदे पे पहुंचा था और माँ बाप कहने लगे कि बेटा हमें भूल गया है। और बेटे ने मुखातिब होके कहा कि आप मेरे माँ बाप को समझाएं, मैं इस वक्त जिस ओहदे में हूं मुझे माँ बाप नहीं देखने, अब मुझे ये देखना है कि इससे अगला रैंक मुझे कैसे मिलेगा। उसने मुझे कहा कि आप समझाएं, अब मुझे माँ बाप नहीं देखने, मुझे खूनी रिश्ते नहीं देखने, मुझे तब ये देखना है कि अगर इससे अगला ओहदा क्या है, इससे अगला रैंक क्या है, इससे ऊंची कुर्सी क्या है, अब ये देखना है मुझे। और उसने इतने मुतमैन संजीदा लहजे में बात की कि वो अपनी बात पे अपने आप को इतना सच्चा कह रहा था कि माँ बाप खामोश हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? इसी माँ ने और इसी बाप ने पहले दिन उसे एक सबक दिया था कि बड़े होके क्या बने, पहले दिन एक सबक दिया था कि बड़े होकर क्या बनना है, बस ये सबक मिला पहले दिन। और वो सबक याद रहता है, जो बचपन का सबक है वो याद रहता है, बचपन तक याद रहता है और ढलती उम्र तक पहले दिन याद रहता है, सबक नहीं भूलता। हमें अपनी नस्लों को क्या सबक देना है, फिर वो नस्लें हमारी काम आएंगी और फिर वही नस्लें होंगी हमारी कब्रों में जाके झांकेंगे। मैं अभी तुर्की के सफर से वापस आया और वहां तफरीही मकामात मुझे पता नहीं कहां है, मैं रूहानी मकामात पे गया और तारीखी मकामात पे गया। मेरा ड्राइवर मुझे एयरपोर्ट से लेने आया तो उसको मैं छुट्टी देकर गया था कि अपने गांव जाए। मैंने कहा कितने दिन गुजारे, कहने लगा 7 दिन। मैंने कहा अम्मा अब्बा की कब्र पे गया था, कह रहे नहीं गया। मैंने कहा उनका हक नहीं था, उनका हक था तो उनकी कब्रों पे जाता और बैठ के कलमा पढ़ता, सूरत कुल्हुवल्लाह पढ़ता, उनको हदिया देता। कुल्हू का पैकेज लेके जाना जरूरी नहीं और ना ही जाना चाहिए, क्यों? ऊपर के फूल मुरझा जाते हैं, जो कब्रों के अंदर के फूल हैं वो कभी नहीं मुरझाते। और ऊपर के फूल इकट्ठे करके ना बाजार में बिकते हैं, आपको इल्म है शायद नहीं, इकट्ठे करके बाजार में बिकते हैं। और फिर मुझे एहसास हुआ कि पहले दिन वाले बहन ने सबक नहीं दिया कि बड़े होके क्या बन, सबक हमारा कमजोर है, सबक कमजोर। तबीयतों में ना जब इल्जाम का मिजाज आ जाए, इल्जाम का मिजाज, तो फिर हर चीज किसी के जिम्मे लगाई जाती है। मेरे बच्चों को भूख लगी, उन्होंने जाके 3 केले लिए, 3 केलों का जब रेट पता चला तो 1 केला पाकिस्तानी 700 रुपए का था, 2100 रुपए पे 3 केले उन्होंने वापस रख दिए। और फिर एहसास हुआ कि मेरा वतन कितना सस्ता है, 3 केले अभी 3-4-5 दिन पहले की बात है, 700 रुपए का 1 केला, 3 केले 2100 रुपए के थे पाकिस्तानी, वहां का जो करेंसी है उसका अगर हिसाब बनाए वो 700 रुपए का 1 केला। हमारी सारी तबीयतों में कि बादशाहों को इल्जाम देते हैं कि उन्होंने जो है वो जिस पार्टी का बादशाह है, कि महंगाई उस वजह से है, नहीं महंगाई मेरी वजह से, हर फर्द ये कहे मेरी वजह से, मैं मुजरिम हूं, मैं कसूरवार हूं, मैंने नीचे अल्लाह को राजी नहीं किया, ऊपर से रब ने नाराज होके महंगाई के फैसले कर दिए। दुआ है ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا، اے اللہ میرے برے اعمال کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرنا، معاف کرنا یعنی عدل نہ کرنا، فضل کرنا، مواخذہ. ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا، بس معافی، رحم رحم رحم. اور اگلی دعا کا حصہ کیا ہے؟ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، میرے اوپر ایسے لوگ مسلط نہ کرنا جن کے دل میں رحم کا ذرہ ہی نہ ہو، جن کے دل میں رحم کا ذرہ ہی نہ ہو. تو پہلے دن بچے کو کیا سکھایا جا رہا، میسج کیا دیا، اس کے قانون. ایک سانپ کو میں نے دیکھا کہ وہ اس کے بچے گالیاں دیتے تھے بہت زیادہ. میں نے کہا گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہمارے یہاں رواج ہے جب بچہ بیٹا پیدا ہو تو آ کے اس کو گھٹی دیتے ہیں، جو برادری کے بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اور ہر بندہ اس کی ہونٹوں کو ناک کو ہاتھ لگا کے گالی دیتا ہے، اور ساتھ کچھ نوٹ رکھ دیتا ہے، کچھ پیسے رکھ دیتا ہے. ہمیں گھٹی میں گالی ملتی ہے، گھٹی میں گالی ملتی ہے. خوش ہو کے گالیاں دیتے ہیں، خوش ہو، ہمیں گھٹی میں گالی ملتی. گھٹی، مجھے وہاں ترکی میں نے ملاقاتیں کی تو مختلف ملکوں کے لوگ آئے، تو ایک صاحب آئے انگلینڈ سے، کہنے لگے کہ میں اپنی نسلوں کو واپس پاکستان لے جانا چاہ رہا ہوں، اب یا مال بچاؤں یا نسلیں بچاؤں، بس دو میں سے ایک چیز بچا سکوں. اپنی زندگی میں پوری انسانیت تک تسبیح خانے کا پیغام کیسے پہنچے؟ اتنی انسانیت پیاسی پڑی، کہاں کہاں لوگ پیاسے پڑے، اور کہاں کہاں لوگ اللہ کی بات سننے کو تیار ہیں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے خزانوں سے لینے کو تیار ہیں. ان کو کوئی دینے والا نہیں، ان تک کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں. احساس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. آپ حضرات سے میری درخواست ہے، درخواست ہے بھائی، آج سپیکر میں گونج ہے، سپیکر کے ذمہ دار حضرات توجہ کریں، سپیکر میں گونج ہے. آپ سے ایک درخواست ہے، اور درخواست یہ ہے کہ آپ اگر دنیا کی مختلف زبانیں جانتے ہیں، جانتے ہیں، تو اس کو آج کے بعد اس لیے جانیں، اس لیے جانیں کہ میں اس کے مسائل اور دکھ حل کرنے میں اس کا ساتھ دوں. میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں اپنے بیٹوں کو لے کر، یا خود جوان آتے ہیں، ہم فلاں ملک میں پڑھنے جا رہے ہیں، ڈگری لینے جا رہے ہیں. میں نے کہا نہ جائیں، کہ لگے ہم نے تو وہ ایڈمیشن ہو گیا، ٹکٹ ہو گئی. میں نے کہا پھر کہتا ہوں نہ جائیں. اچھا، میں نے کہا میں یہ نہیں روک رہا کہ نہ جائیں، اپنی نیت کو بدلیں. آپ اس ملک میں سیر کرنے جا رہے، ڈگری لینے جا رہے، اس ملک میں تعلیم اور مال اور دولت اور چیزیں لینے جا رہے نہیں، بلکہ اس ملک میں لوگوں کو یہ زندگی دینے جا رہے کہ زندگی کو اگر بنانا ہے تو چوکٹ مصطفیٰ سے نسبت رکھ کے پھر مسائل کا حل ہو. یہ میسج دینے جا رہے ہیں، اور اس کی مثال میں آپ کو اکثر دیا کرتا ہوں، اور وہ یہ دیا کرتا ہوں کہ ہم کبھی بھی جو ہے، اچھا قریب کرنے سے ٹھیک ہو جائے، اچھا ٹھیک، کبھی بھی اپنی زندگی میں हमने भैंस गोबर के लिए नहीं ली, गाय या भैंस, गाय इसलिए नहीं ली कि उसका गोबर जो है वो हमारे काम आएगा उसको जलाने के लिए, हमने तो दूध के लिए गाय ली है। गोबर तो मुफ्त में मिलता है। हम जो भी सफर करें उस सफर का मकसद पहले मुतय्यन करें कि मैं क्यों कर रहा हूं सफर, मैं सफर क्यों कर रहा हूं, मैं सफर क्यों कर रहा हूं। आपके कदम कदम पे अल्लाह की रहमत मिलेगी, अल्लाह की मदद मिलेगी, अल्लाह का ताल्लुक नसीब होगा और आपको बरकत मिलेगी और खैर मिलेगी और मसाइल हल होंगे और मुश्किलें दूर होंगी। फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे सिर्फ नियत और जज्बा बदलने से, नियत और जज्बा बदलने से। सहाबा किराम की एक जमात एक जंगल में गई और जंगल के जानवरों को ऐलान किया, अफ्रीका का जंगल जहां कदम कदम पे जहरीली चीजें, ऐलान किया कि जंगल के जानवरों दरिंदों को हम कमली वाले के गुलाम हैं, हमने यहां रात बसर करनी है, हमारे लिए जंगल को खाली कर दो। वो सांप है या बिच्छू, वो दरिंदा है, कोई भी चीज है, जागती आंखों से लोगों ने देखा कि वो जंगल सारा का सारा खाली हुआ। अजब बात है, कुछ साल पहले एक साहब वहां गए थे, कहने लगे हम उस जंगल में गए और वहां के मकामी लोगों ने हमें बताया ये वो जंगल है जिस जंगल में सहाबा कमली वाले के गुलामों की जमात टीम आई थी और गुजर रही थी, किसी काफला था गुजर रहा था और उन्होंने ऐलान किया था। आज 14 सदियां हो गई, आज तक भी वहां दरिंदे और जहरीली चीजें नहीं, आज तक नहीं, आज तक नहीं। वो जो ऐलान नहीं था उस ऐलान के पीछे एक जज्बा था कि हम कमली वाले के गुलाम हैं। ये लफ्ज कहां था, ये नहीं कहा था कि हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं। निस्बत मुस्तफा, कमली वाले के साथ निस्बत को जोड़ के कहा कि हम कमली वाले के गुलाम हैं और हम तुम्हें हुक्म देते हैं इस जंगल को खाली कर दो कि हमने रात यहां बसर कर दी। कमली वाले के गुलाम हैं, मैं कि हज के हज का दिन था यौम अरफा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहंशाह विलायत है, आपने एहराम बांधा हुआ था, एहराम बांधा हुआ और एक बंदे को बिच्छू ने डस लिया, उसकी चीखो पुकार सुन उसकी चीखों पुकार सुनी तो हैरत और अफसोस का इजहार फरमाया, फरमाया लगता यह है तेरी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत कमजोर है, तूने आके क्यों नहीं कहा कि मैं आज एहराम की निस्बत में हूं और एहराम की निस्बत वो है जिस निस्बत को सारे अंबिया ने हज किया, सारे अहले बैत ने हज किया और सारे सहाबा औलिया ने हज किया, मेरे साथ वो निस्बत है, अंबिया की निस्बत है, तूने क्यों नहीं कहा। अगर तेरी निस्बत मजबूत होती तो बिच्छू तेरे साये से भी डरता और दूर चला जाता। हमारा पहले दिन का प्रोग्राम क्या है,
हमारी पहले दिन की सोच क्या है और हम अपनी नस्लों को क्या सोच सिखा रहे हैं। अपने लिए दुआ मांगना, अपना घर, अपनी सवारी, अपनी सहूलत, अपनी जिंदगी, हमारा तो पहले दिन ये सवाल और ये सोच है हमारी, और ये सोच सबसे कमजोर सोच है। हमारी सोच में सारे गैर मुस्लिम हमारे और सारे मुसलमानों के तबकात हमारे। अच्छा, ये सोच उस वक्त आती है जब बंदा ना गली गली चक्कर लगाता है। मुर्शिद ने फरमाया ये नहावंद एक जगह है, ये वहां के गवर्नर थे। तो तलाश मुर्शिद में निकले हजरत शिबली रहमतुल्लाह ने। मुर्शिद ने फरमाया फकीरी दरवेशी फकीरा, फकीरी इतनी दूर है जितनी ऊंची खजूर है। फकीरी दूर है, तुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा जी सारी उम्र मैंने गवर्नर बनने के लिए सारी मेहनतें की, जो फरमाएंगे वो करूंगा। फरमाया ऐसा कर, एक साल गंधक का काम कर, गंधक सल्फर। उस काम में क्या है, सबसे पहले तो गंधक टुकड़े टुकड़े होके चूरा हो जाती है। चूरा कोई लेने को तैयार नहीं, डली हर बंदा लेने को तैयार है। दूसरा बारूद है, पल में आग लगे धमाका हो जाए। तीसरा बारिश और नमी के मौसम को फौरन कबूल करे, पिघलना शुरू हो जाए। और चौथा सख्त बदबू उसमें से निकलती है, बदबू निकलती है। पर मैं गंधक का काम कर और बेच, कहीं दुकान लगा ले गंधक की, एक साल पूरा काम कर, और एक साल में जब तेरा कारोबार चमके बंद करके हमारे पास आ जा। ठीक है, क्योंकि तलब सच्ची थी, तलब सच्ची थी, इसलिए हर शर्त मंजूर है। और तलब और तड़प सच्ची थी तो हर शर्त मंजूर है। तो फरमाया ठीक है, एक साल तक गंधक का कारोबार किया, गंधक का काम किया, गंधक का काम किया। और फिर एक साल के बाद वापस आए तो हाथ में और कपड़ों में सारी गंधक की बू है। और गंधक का एक नुकसान यह भी होता है कि अगर उसके साथ बहुत वक्त रहा जाए तो जिल्द सड़ जाती है, जिल्द सड़ जाती और उसका रंग बदल जाता है। मैं हजूर आपका हुक्म था, साल हो गया हाजिर हुआ। मैं अच्छी बात है, अब ऐसा करो एक साल गलियों में भीख मांगो और जो भीख मिले वो गरीबों को दो और अपना पेट मजदूरी करके पालो। एक साल गलियों में भीख मांगो, जो भीख मिले वो तो कर दो, किसको, गरीबों को, मिस्कीनों को हदिया कर दो। और अपने पे मजदूरी करके एक साल तक। जी हुक्म। असल में जब मानने का मिजाज आ जाए और खाने का मिजाज आ जाए और जब सच्ची तलब हो, सच्ची तड़प हो, सच्चा जज्बा हो, तो फिर जिंदगी में सच्ची राहों का सफर आसान हो जाए। अब एक साल तक भीख मांगी और भीख मांग के और अपने लिए मजदूरी की और मजदूरी करके पेट पाल एक साल पूरा। और फिर हाजिर हुए
جی آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ اللہ سکھائیں گے، مجھے اللہ اللہ سکھا دیں. فرمایا ہاں ایک شرط اور بھی ہے، ایک سال وہ کرو اور ایک سال کے بعد پھر فرمایا اب میرے سامنے بیٹھا کر، اب مجھے آپ بتا دیں جو 3 سال کی مشقتوں اور 3 سال کی مدھانیوں اور 3 سال کی ٹھوکروں سے نکلا ہے، وہ سامنے بیٹھ کے بات کو کتنی عزت عظمت سے لے گا، اونگے گا، سوئے گا، ٹیک تلاش کرے گا، بولو کیسے بات سنے گا، کیسے آپ بتائیں بات سنے گا کیسے. جب بھی بارش ہوتی ہے گلیوں میں پانی میں نکلواتا ہوں، آج بھی میں نے کہا گلی میں سے پانی نکالو وائپر سے. کوئی ایک بندے کو احساس نہیں کہ گلی سے پانی نکالے، یہاں سے خواتین بیچاری آتی جاتی ہیں. ابھی میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کوئی ٹیم بنا دو، سردی گرمی میں جب بھی بارش ہو گلی سے پانی نکال دیا کرو، اللہ کی مخلوق کو راحت ملے. پانی گندا، چیٹے، کپڑے خراب، نماز پڑھنی ہے. کسی کو احساس کیوں نہ ہوا؟ سامنے ہمارے آل عباس کے سامنے پانی اکثر جمع ہوتا ہے، اس طرف گلی میں جنوب کی طرف. اب سوچیں جس نے 3 سال ٹھوکریں کھائی ہوں، اس کو پھر مرشد کی صحبت ملے اور مرشد کے مجلس میں بیٹھے، وہ کس عظمت سے بیٹھے گا، کس وقار سے بیٹھے گا، کس طلب سے بیٹھے گا، کس تڑپ سے بیٹھے گا، کس جذبے سے بیٹھے گا، کس کیفیت سے بیٹھے گا، اب میں اندازہ نہیں کر سکتا. اس کا جذبہ کیا ہوگا، اس کی طلب کیا ہوگی، اس کی تڑپ کیا ہوگی، اس کی سوچ کیا ہوگی. ہماری زندگی کا پہلے دن کا پیغام ہماری زندگی پہ اثر کیے ہوئے ہے، اثر کیے ہوئے. ہماری زندگی میں پہلے دن کا پیغام ہماری زندگی پہ اثر انداز ہے، اس لیے نفسا نفسی بڑھتی چلی جا رہی، نفسا نفسی بڑھتی چلی جا رہی. اور زندگی میں بس اپنی ہی جان ہے، اپنا ہی ملک ہے، یا اپنا ہی وطن ہے، یا اپنی ہی روح ہے، یا اپنی ہی اولاد ہے. اپنے جنازے کی دعا یاد کی ہے، اگر نہیں کی ضرور یاد کریں اور فیصلہ کریں کہ جنازہ میں نے باوضو پڑھنا ہے. آپ کہیں گے میں حیران ہوں، جنازہ بھی بے وضو پڑھا جاتا ہے، 90% جنازہ بے وضو پڑھا جاتا ہے. رسمی حاضری ہوتی ہے، کون سی حاضری؟ خوش قسمت ہے جس کے جنازے میں باوضو لوگ ہوں، اور خوش قسمت اگلے ہیں جس کے جنازے میں ایسے لوگ ہوں جن کو جنازہ آتا ہے. آپ جنازے کی دعا ذرا غور سے سنیں. اللہم اغفر لحینا، اللہ جتنے زندہ ہیں ان کو معاف کر دے، ومیتنا جتنے مردہ ہیں ان کو معاف کر دے، وشاہدنا جتنے موجود ہیں ان کو معاف کر دے، وغائبنا اور جتنے عالم ارواح میں ہیں یا جتنے مر گئے غائب ہیں یا ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہیں دنیا میں جہاں جہاں، ان کو معاف کر دے. وصغیرنا جتنے چھوٹے ہیں معاف کر دے، وکبیرنا جتنے بڑے ہیں معاف کر، وذکرنا جتنے مذکر ہیں معاف کر دے، وانثانا اور جتنے مؤنث ہیں مؤنث ہیں ان کو معاف کر دے. اس میت کا تو ذکر آیا ہی نہیں پورے جنازے میں، یہ جو میت سامنے پڑی ہے اس کا تذکرہ کم ہی آیا، اس کا میت میں آ گیا. اللہ اغفر لحینا ومیت، جو میتوں میں اس کا تذکرہ آ گیا. یہ سوچ بھی جا رہی ہے تیرے باپ کا جنازہ ہے، تیری ماں کا جنازہ ہے، تیرے عظیم عزیز کا جنازہ ہے، اور تو جنازہ پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے. پر خیال کر
کملی والے نے سوچ تجھے بڑی اونچی دی.
اللہ سے نہیں نا اللہ جتنی پوری دنیا میں. اچھا ہی نام مسلمان نہیں آیا صرف, اگر مائی نام مسلمان آتا تو ساتھ ہوتا اللہ مغفر لحین المسلمین. نہیں, جتنے زندہ ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں نہ ماننے والے ہیں, کملی والے کو ماننے والے ہیں نہ ماننے والے ہیں, جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں مولا ان کو معاف کر دیتا. یہ جذبہ دیا جا رہا ہے. اور ہمارا جذبہ کیا ہے؟ پہلے دن بچے کو پوچھا جاتا ہے بڑا ہو کے کیا بنے, وہ ایک جذبہ ہے جو ماں باپ اسے روزانہ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا, فلاں بڑا بنا تھا اس کے پاس یہ دولت یہ مال یہ عہدہ یہ سلام اور یہ سواریاں اور یہ رینک, فلاں یہ بنا تھا فلاں یہ بنا. اہل بیت کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں ایک سبق ہے, وہ اپنی نسلوں کو پہلے دن ایک زندگی دیتے تھے, پہلے دن ایک زندگی دیتے تھے جس کو ہمارے درویش کیا کہتے ہیں, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنا, مجھے اس سے پہلے کوئی خبر نہیں اب خبر ہوئی گئی کہ تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنا. اس دعا نے ایک میسج دیا ہے پیغام دیا ہے, اپنے فرقے سے نکلیں اپنے مذہب سے نکلیں اپنے صوبے سے اپنی زبان سے اپنی قوم سے نکلے, اس دوران ایک میسج دے اپنے پیغام ایک دیا ہے کہ نکل کے اپنے ذہن کو وسیع کریں. دیکھو برے سے کبھی نفرت نہ کرنا, اس کی برائی سے نفرت کرنا, برے سے کبھی نفرت نہ کرنا. وہاں ترکی میں ننگے مرد ننگی عورتیں ایسے لباس جو ننگے لباس تھے, کبھی ان کے لیے دل میں نفرت نہیں آئی, بلکہ میں نے اپنے سے کہا بیٹوں سے بیٹا جب بھی دیکھو بیت الخلا کی دعا پڑھو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ سے بھی عرض ہے جس کا لباس نامکمل ہو اس کو بیت الخلا کی دعا دل میں مسلسل پڑھو, اس کا دل پہ اثر نہیں آتا تاثر نہیں آتا غبار نہیں آتا اور دل میلا نہیں ہوتا. بیت الخلا کی دعا پڑھو. لیکن ان کے لیے ہمارے دلوں میں کہیں کا جذبہ کہنا ان کی زندگی میں کملی والے کا نور آ جائے, ان کے دلوں میں کملی والے کا نور آ جائے, اور محمد آل محمد کی نسبت اصحاب محمد کی نسبت اولیاء محمد کی نسبت ان کے دلوں میں اتر جائے. یہ ہمارے دلوں کے اندر کا تاثر, پر یہ پہلے دن سے ماں باپ سکھائیں کہ بڑے ہو کے کیا بنا, یہ پہلے دن سے کہ بڑے ہو کر بننا کیا ہے یہ ماں باپ سکھائیں, بڑے ہو کے کیا بننا, امت کا خیر خواہ بننا ہے ہم درد بننا ہے, لوگوں کو خیر کی راہیں دینی ہیں اور لوگوں کو خیر کی راہوں پہ لانا ہے اور لوگوں کی خیر کی راہیں سوچانی ہے اور لوگوں کے دکھ درد میں ہمارا دکھ درد اپنا بن جائے ہمارا چین ختم ہو جائے. یہ ہماری طبیعتوں میں آئے, یہ ہمارے مزاجوں میں آ جائے, یہ ہمارے اندر جیوں میں اتر جائے. میں اپنے گھر والوں سے کہہ رہا تھا کہ جتنے ترکی میں استنبول کے ہوٹل میں جتنی دنیا ملکوں کی آئی ہے نا, یہ مجھے ملنے نہیں آئی, یہ مجھے نہیں ملنے آئی,
मेरे पैगाम को मिलने आई, ये मेरे मैसेज को मिलने आई। पीर बहुत बड़े बड़े पड़े हैं, नामवर पीर पड़े हैं, बड़ी बड़ी दरगाहें, गद्दियां, आस्थाने बड़े बड़े पड़े हैं। हाँ, पीर वहां पहुंचते हैं सफर करके मुरीदों के पास। और ये दुनिया, हम तकरीबन 7 घंटे का सफर, 7 घंटे का सफर हमने किया, 7 घंटे का सफर। बुर्सा शहर है, बुर्सा से सौत, जिसे सौत भी कहते हैं, जहां अर्तगुल की कब्र है। हम वहां, फिर वहां से हम दोपहर का खाना एक जगह खाया, और 7 घंटे का सफर करके जब हम इस्तांबुल में हजरत अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, उनके मजार के सामने एक होटल था, वहां पहुंचे, बहुत सारे लोग खड़े थे। मैंने कहा ये बंदे खड़े हैं, पता चला कि वो पहले से इंतजार में आए हुए थे, कोई 2 दिन से, कोई 3 दिन से, कोई आज के दिन पे इंतजार में आए हुए थे। और मैं जब पहुंचा, यकीन जानिए चीखों पुकार थी, वो मेरे लिए नहीं थी, मेरी ये भूल हो जाए या मैं अपना सबक भूल जाऊं, मेरे लिए नहीं थी। वो जो पैगाम तस्बीह खाने से जिंदगी के लिए चला है, और जो 1991 में जाते जाते मेरे मुर्शिद मुझे देकर गए हैं, वो उस पैगाम के लिए आए थे। वो मैसेज था, वो पैगाम था, वो पैगाम उन्हें लाया था, दुनिया के कोने कोने मुल्कों से लाया था, मुल्कों से लाया था। वो पैगाम लाया, और वो लोग इंतजार कर रहे हैं लाखों रुपए टिकटों के लगा के, वो सिर्फ मेरी मुलाकात, और हर बंदे से मुलाकात वही 5 से 7 मिनट बस। ये नहीं है कि कोई घंटों मुलाकात हुई, 5 से 7 मिनट मुलाकात बस। और 5 से 7 मिनट फैमिली, सब फैमिली, एक एक की नहीं, फैमिली की बात सुनी, दुआ की, अल्लाह का नाम दिया, बस अगली फैमिली, फिर अगली फैमिली, फिर अगली फैमिली। मैंने तो छोटी सी पोस्ट डाली थी कि आखिरी दिन जो है मैं मुलाकातें करूंगा वहां दुनिया के मुल्कों में। बंबई से एक फैमिली आई, कहने लगे हम पाकिस्तान में आए तो हमारी अगर मोहर लग जाएगी तो फिर हम कहीं जा नहीं सकेंगे, तो यहाँ इस्तांबुल में आए तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। बहुत दुनिया के लोग आए, मुझे मिलने आए थे कोई, मैं तो राजी सो रहा हूं, मैं मुंह ना मथा जिन पहाड़ लथा मेरा पैगाम सोना है, मेरा मैसेज खूबसूरत है, हाँ मेरा मैसेज राजी सोना है। वो एक मैसेज है जिसमें इंसानियत है, जिसमें कर्म है, जिसमें एक गम है, जिसमें अपनी जात से निकल के लोगों के लिए सोचना है, लाइस के मसले हल हो जाएं, इसकी मुश्किल दूर हो जाए, ये गमों में, बीमारियों में, दुखों में, और ये मुसीबतों में, और ये परेशानियों में घिरा हुआ है, किस तरह गम, बीमारियां, दुख, तकलीफें, उससे ये निकल आए और इसकी जिंदगी भी खुशहाल हो जाए, और दुनिया भी और आखिरत। आज एक साहब ने मुझे, ये मेरा प्रोग्राम जो होता है टीवी प्रोग्राम, उसमें एक सवाल किया, वो सवाल समझ नहीं आ रहा था कुछ, फिर मैंने कहा फिर बोले, फिर समझ नहीं आया, फिर बोले, वो कहने लगा मुझे डबल स्टोरी, बहुत बड़ी कोठी और घर चाहिए। तो सुनने वाले हंस पड़े, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमने तो हर चीज जल्दी से मांगनी है, और हमें ये मांगने का पैकेज पहले मिला है, तब बना आते ना फिर दुनिया असहत। मुझे डबल स्टोरी, बहुत बड़ा घर चाहिए, मिलेगा? उस करीम के खजाने में कमी है कोई? और मैंने कहा कि वही वाली दुआ पर اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزق. پر وضو کے دوران بھی پڑھ جتنی دفعہ پڑھی جائے, اور سارا دن بہت پڑھیں بہت پڑھیں بہت پڑھیں بہت پڑھیں. جس کو بتایا جس نے کیا یقین رب نے بڑا گھر عطا کیا, بڑا گھر عطا کی. اور یہ گھر قدرت کا نظام دیکھیں, جو کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی آخرت میں دونوں جگہ بڑے گھر میں. انشاءاللہ وکفا باللہ ولیہ وکفا باللہ نصیر. اپنے ذہن کو اتنا وسیع کریں. ایک صاحب مجھے ملے کونیا میں, حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ, کہنے لگے میں آپ کو دیوبندی سمجھتا تھا, آپ مجھے معاف کر دیں, آپ دیوبندی, اور میں آپ کو اہل حدیث سمجھتا تھا, مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کو بہت برا بلا کہا. چلو ٹھیک ہے. ایک بار مجھے ایک بندہ ملا, کہنے لگے میں آپ کو بریلوی سمجھتا تھا, مشرک سمجھتا تھا, مجھے معاف کر. میں کس کی سنوں کس کی مانوں؟ رام جا سب کا سان جا. مجھے ایک بندہ کہنا تھا دیوبندی ہے, میں کہ نہیں میں تو پیوندی ہوں, پیوند لگاتا ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہوں. اپنے والد صاحب کو میں نے دیکھا رحمت اللہ علیہ, اب بھی ہیں باغات ہمارے. وہ باغات میں مالی کیا کرتا تھا, دیسی پودا اٹھاتا تھا اور لنگڑا انور رٹور یا چونسا یا بڑی بڑی اعلیٰ قسموں کے ساتھ اس کو ایسا لاجواب شاخیں بنا, ایسے پیوند کر, اوپر ایسی ٹاکیاں اور ان پہ مٹی لگا, وہ کرتا تو میں تو پیوند لگاتا ہوں, پیوند ہی میں. کہنے لگا آپ وجدی ہیں؟ کہنا میں تو وجدی ہوں, مجھے وجد آتا ہے کملی والے کے نام, وجدی ہوں. مجھ سے وہ بندہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ بس پتہ نہیں تھا میں آپ کو دیوبندی سمجھتا رہا, وہابی سمجھتا رہا. اور ہماری دیواریں کب ٹوٹیں گی, دیواریں کب ٹوٹیں گی, یہ زندگی کا نظام کب ٹوٹے گا, اور کب ہماری طبیعتوں میں یہ چیز آئے گی سارے میرے ہیں. ماں کا جو سب سے زیادہ توجہ بد شکل ہوتا ہے اس کا نام مکھن ہوتا ہے یا چاندر ہوتا ہے؟ اب بتاؤ. ہمارے یہاں ایک صاحب ہے, کچھ زیادہ ہی سانولے ہیں, کچھ نام ہے نور الحسن. کہتے ہیں مجھے کلاس پہلے کہتے تھے تھوڑے پاس پٹھا نام رکھنے کا رواج ہے, الٹا نام رکھنے کا رواج ہے, تیرے چہرے پہ تو نور ہے ہی نہیں, راجت کو جائیں نام یہ ہے اور شکل. کب ہمارے مزاجوں میں یہ بات ٹوٹے گی, ہماری زندگی میں یہ بات ختم ہو؟ ہم بھی کیا کریں, پہلے دن سے یہ پیغام بھی ہمیں ملا, اور پہلے دن سے یہ پیغام بھی ہمیں ملا کہ بڑے ہو کے کیا بننا, اور اس کے لیے دن رات مشقت اور محنت, اور کرتے 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 حتیٰ کہ پھر ماں باپ اپنی رشتوں کو بھول. ایک بہن آئی میرے پاس, بہن بری بہن تھی, کہنے لگا میرا سگا بھائی فلاں عہدے میں چلا گیا ہے, اس کے نمبر ہر چیز اب تبدیل ہو گئے ہیں, آج اتنا عرصہ ہوا مجھ سے رابطہ نہیں کیا بھائی, کوئی ایسا اسم بتائیں بھائی رابطہ کریں, مجھے کچھ نہیں چاہیے بھائی سے, بھائی کی شکل ایسے دیکھ لوں گی, کیونکہ بھائی کی شکل میں امر ابا یاد آتا ہے. حجاج بن یوسف کے پاس
एक माई आके मिनते करने लगी, गौर से सुनने की बात, माई आके मिनते करने लगी कि मेरा बेटा है, भाई है, शौहर है तेरी कैद में, और तूने हुक्म दिया इनको कत्ल कर दो। कत्ल करना उसका बेहतरीन मशगला था, कत्ल कर दो, माफ कर दे, छोड़ दे, तेरी मेहरबानी है, मिन्नत कर रहे। हजार जैसे बंदे को तरस आ गया और कहने लगा, अच्छा ऐसा कर, इनमें से एक बंदा ले जा, सारे नहीं छोड़ सकते। माई सोच के कहने लगी, भाई दे दे, भाई तो छोड़ दे, ठीक है बाकियों को तो कत्ल करता है, सर कलम करता है, कर दे, भाई दे दे। हजाज हैरान हुआ, कहने लगा कि भाई क्यों मांगा? वो कहने लगी, शादी करूंगी, शोहर मिल जाएगा, शादी करूंगी, बेटा मिल जाएगा, ना अम्मा आएगी, ना अब्बा आएगा, ना भाई मिलेगा, अम्मा अब्बा तो फिर नहीं आएगा, भाई कहां से मिलेगा। इतनी उसके अंदर इतना ज्यादा खुलूस था उस खातून में। हजाज कहने लगा, तेरे हुस्न इंतखाब में, तेरा हुस्न इंतखाब, ये तूने भाई का इंतखाब किया कि भाई का रिश्ता फिर नहीं मिलेगा, तूने भाई का इंतखाब किया, तेरा हुस्न इंतखाब यह है कि मैंने चार तीनों को माफ किया, तीनों को ले जा। ये सबक पहले दिन से सीखना है, ये सबक पहले दिन से अपने दिल में उतारना है, और ये सबक पहले दिन से अपने जिंदगी का सबक बनाना है। पहले दिन से हमारी तबीयतों में, हमारी जिंदगियों में ये सबक उतर जाए, हमारी पहचानें बदल जाए। और कुरान ने हमारी पहचान बताई है, याद रखा है, कोई मसलक मजहब फिरके की पहचान नहीं बताई, कुरान ने हमारी पहचान बताई है, नहनु मिनल मुस्लिमीन, हम मुसलमान हैं बस। ये सबक हमारी जिंदगी में बदल जाए, बदल। मैं आप हजरात को वो सीने के राज बता चुका हूं और बताता हूं जो लोग अमूमन कब्रों में लेकर चले जाते हैं, वो सीने के राज, वो जिंदगी के राज, टोटकों की शक्ल में, नुस्खों की शक्ल में, वजीफों की शक्ल में, अमल अमलियात की शक्ल में जिंदगी के सबक बताता हूं। मैं असहाब कहफ के गार में गया, जुमा मैंने वहां पढ़ा, मरसिन एक शहर, तारसुस, मरसिन एक शहर, उससे आगे एक शहर है उसका नाम है तारसुस। अच्छा, आज तक मशहूर शहर हमने सुने, अंकारा सुना, तुर्की का शहर इजमीर है, अनातोलिया, अनातालिया वहां है, चीजें हैं, ऐसे शहरों में जाना ही नहीं हुआ, ऐसे शहरों में जाना हुआ जहां वक्त की विलायत के तार तार थे, कहीं आले रसूल, कहीं अस्हाबे रसूल, हजरत खालिद बिन वलीद के बेटे के पास गए, सुलेमान बिन खालिद, और बड़ी बड़ी हस्तियां। तो हम असहाबे काफ के गार में वहां जुमा पढ़ा, गार के साथ मस्जिद वहां जुमा पढ़ा। जुमा पढ़ने के बाद मैं गार के नीचे उतरा, लो क्या गार, और फिर मैं वो सारा नक्शा याद आया, वो नक्शा याद है, हजारों साल पहले, आज भी वहां खुश्क पहाड़ हैं और सड़कें आज बनी हुई हैं, बस चंद मुख्तसर सड़कें, आज भी वहां दुनिया नहीं बसती उनकी गार के करीब। हजारों साल पहले क्या दुनिया होगी, कुछ भी नहीं होगा। और वहां जाके मैंने अमल शुरू किया,
उनके नामों का। पहले उनका वाकया सुन ले। एक बादशाह था जिसका नाम था दकियानूस। वो बादशाह था, वो कहता था मैं खुदा हूं, मैं रब हूं, मुझे मानो। दकियानूस, सारे उसको रब मानते थे। कुछ लोग थे ऐसे जो कहते थे नहीं, रब अल्लाह है, रब अल्लाह और अल्लाह ही अल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी, ला महबूबी, ला मकसूबी, ला मौजूदी, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूल। आखिरकार बादशाह ने उनकी जिंदगी को तंग कर दी। तो बादशाह ने कहा कि इनको खत्म कर दो, ये मुझे रब नहीं मानते। तो वो अपना ईमान बचा के हिजरत की। उन्होंने 6 अफराद आगे जा रहे थे तो एक चरवाहा था जंगल में, उनके पास कोई मंजिल नहीं थी, बस वो बादशाह की नगरी दकियानूस जो था उससे दूर होके कहीं दूर जहां दिल की गहराइयों से उन्हें अल्लाह अल्लाह करने पे कोई रोकने वाला ना हो वहां चले गए। जा रहे थे तो एक चरवाहा मिला, उसने पूछा तुम कौन? तारुफ हुआ तो कहने लगा मैं भी एक अल्लाह का यकीन रखता हूं, तो मैंने छुपाया हुआ है, मुझे भी अपने साथ मिला। वो हो गया, अगर वो चला तो साथ उनका कुत्ता भी चला, उनका कुत्ता भी चला। उन्होंने कहा तेरा कुत्ता जाएगा साथ तो जगह जगह भौंकेगा, शोर करेगा, आवाजें निकालेगा, तो हम पकड़े जाएंगे कि बादशाह ने हमारे पीछे जासूस छोड़े हैं, तो ये भागने ना पाए। जहां जाएंगे ये अपना मजहब लोगों को सिखाएंगे, मेरे मजहब का इनकार करेंगे, इनको कहीं जाने ना दिया जाए, इनको कहीं जाने ना दिया। तो उसने कहा नहीं, कुत्ता कहने लगा मुझे अपने साथ रखो, ना मैं टोंका हूं, ना मैं टोंका हूं, ना मैं शोर मचाऊं, ना मैं पंका, ना मैं टोंका, ना मैं शोर मचावा, नेका दे लग लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। ये जो नेकों की महफिल है, ये नेकों के साथ उठना बैठना है, यही मेरी आखत और बख्शिश का सामान है, यही मेरी आखत और बख्शिश का सामान। मैं हैरान हूं वहां चूंकि असहाबे कहफ है, मैंने किसी कुत्ते को दिन और रात में आवाज निकालते नहीं देखा, हर कुत्ता सोया हुआ है और ऐसे हाथ करके आगे। पर जिनके बारे में कुरान की आयत है वकल्बुहुम बासितुन ज़राबिल बश, अल्लाह के कुरान ने उनके कुत्ते के सोने की हालत को भी बयान किया है। हैरान कर बात कि कुत्ता जो है गार के आगे कैसे अंदाज से सो रहा है, उसको भी बयान। भेड़ भेड़ जिले कुत्ते हैं, ये छोटे बड़े कुत्ते नहीं है, भेड़ भेड़ जितने कुत्ते हैं, बकरी बकरी जितने कुत्ते हैं, पूरे तुर्की में इतने बड़े कुत्ते मैंने जिंदगी में नहीं देखे, बहुत बड़े बड़े कुत्ते। अब जब ये गार में चले गए, थके हुए थे, खौफ सदा थे, अल्लाह ने इन पे सुकून नाजिल कर दी और ये सो गए। और कितने दिन सोए? 3 सदियां 9 साल, 300 सो गए। और कुदरत ने निजाम, अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि हमने उनकी करवटें बदली और सूरज की रोशनियां भेजी और हम के जिस्म को महफूज रखा। जब उनमें से यमलीखा उठा तो मक्सल मीना उठा है,
एक का नाम यमलीका था, एक का नाम मक्सर मीना था, एक का नाम कशपुतक, फिर तब यूनिस, फिर अजराफत यूनिस, फिर कशाफत यूनिस, फिर यवाना स्कूस, और कुत्ते का नाम था कितमीर। उठे ना सारे नींद से, फैल लगे, सारा दिन हो गए सोए, एक कहे आधा दिन सोए, एक के नहीं ज्यादा सोए। आखिरकार ये हुआ कि हम असर तक सोते रहे, भूख लगी थी, पैसे के साथ उन्होंने कहा हमें से दो बंदे जाएं, जाके खाना ले आए चुपके चुपके, लोग खाना तो खाएं। जब दो बंदे गए चुपके चुपके खाना लेने, उनके पैसों को देख के दुकानदार कहने लगा कि किस दौर की करेंसी, किस दौर के सिक्के लाए हो, ओए बाबा कहां से लाए हो, देखे शक्ल। वो कहने लगे अभी तो हम सुबह आए थे और दिन डूबते हुए भूख लगी है, और तुम कहते हो किस दौर की करेंसी। लेकिन इन्होंने खुद महसूस किया, लोगों के लिबास बदले, इमारतें बदली, रास्ते बदले, शक्लें बदली, जिंदगी का हैरान हुए क्या कुछ हो गया, एक दिन में सब भी बदल गया। वो एक दिन कहां था, वो तो 309 साल, 309 साल। और मैं जब बाहर में गया ना, वो तो हुकूमत ने वहां लाइटें लगाई हुई है, गार के अंदर गार, फिर उसके अंदर गार, फिर उसके अंदर गार, इतनी भी कि एक बंदा बामुश्किल अंदर ऐसे घुस जाए, ऐसी गार है अंदर बामुश्किल। अब इनको देख के कहने लगे आपके सिक्के तो उस दौर के हैं जिस दौर में हमारे बड़े बताते थे, कुछ अल्लाह वाले थे जो अपना ईमान बचा के निकले थे, और उस दौर में बादशाह दकिया नूस था, अब तो बादशाह भी मुसलमान है, आप कहीं वो तो नहीं है। हाँ वही है, उसको तो सदियां गुजर गई है। वो तो उठ के चूमने लगे, क्या आप तो वो ईमान वाले अल्लाह वाले दुर्वेश वली है। ये घबरा गए, बात बादशाह तक पहुंची, दुनिया जमा हो गई, इकट्ठी हो गई, इनकी ज़ियारत करने आए, खाने लिए, कहने लगे खाने लेते हैं, चले आप हमें अपने दूसरे दोस्तों से भी मुलाकात करो। अब ये सारे चल पड़े घर की तरफ, घर की तरफ। अब जब घर की तरफ चल पड़े, घर के बाहर कुत्ता बैठा था, कुत्ते ने अपने साथियों को पहचान लिया, और ये अंदर गए, कहने लगे कि हम अंदर जाते हैं और अपने दूसरे दोस्तों को गार से ले आते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं, पर वापस ना आए और आज तक नहीं आए। और कुदरत का निजाम, बाहर खड़े लोग हैरान, इंतजार, परेशान, रब ने गार के नक्शे रास्ते जिंदगी बदल दी, हत्ता के वो खुद रास्ता भटक गए, हत्ता के वो वापस चले गए। लेकिन आज मैं एक चीज बताता हूं, एक चीज बताता हूं नामों का जिंदगी पे क्या असर होता है। और इंसान जब नेकी या बदी पे आता है, उसका नाम कितना पाकीजा या जहरीला हो जाता है। उसका नाम था, उसको मीरन कहते थे, अमीर बश्क उसका नाम है था, मुझसे कहने लगा मेरे गधे के यहां जख्म हो गया। गधे को नीचे ना पट्टी बांधते हैं, ऊपर उसके वो डाल के नीचे, तो पट्टी घिसते घिसते जख्म हो गया। तो कहने लगे किसी दवा से जख्म ठीक ना हुआ, बहुत मरहमे, बहुत दवाएं लगाए। मीरन कहने लगा मुझे, और ये वाक्य मैंने 1997 में लिखा था अपनी किताब सुन्नत नबी और जदीद साइंस में। तो कहने लगा कि मुझे किसी ने कहा ऐसे बंदे जो सूद लेते और देते हैं, सूद देते हैं लोगों को, सूद देते हैं, उनके नाम लिख 5-7 बंदों के और इसके गले में तावीज डाल दे। कहने लगा मैं हंस पड़ा, कहने लगा नहीं ये टोट का है, सूद इतना जहर है, इतना जहर है कि जिस जमीन का सूद पे बीज लिया जाए, स्प्रे लिया जाए, खाद ली जाए, बीज लिया जाए, मैं जिम्मेदार का बेटा भी हूं, कादिर का बेटा भी हूं और खानदानी हमारी फकीरी दुर्वेशी भी है, वो जमीन बांझ हो जाती है, वो जमीन बांझ हो जाती। सूद वालों के नाम लिख गधे के गले में डाल दे, जख्म ठीक हो जाएगा। और कहा ऐसा ही हुआ कि सूद खोरों के नाम लिखे और गधे के गले में डाले, गधे का जख्म ठीक हो गया। मैं अब आपको एक अंदाजिया बता रहा हूं, अगला अंदाज सुने। शद्दाद, फिरौन, हामान, निमरूद, कारून, अबू जहल, ये नाम मैंने बयान किए हैं। इन नामों को कागज पे लिख के भी यही कुछ होता है, हत्ता कि इनके नामों से शयातीन, जिन्नात, काली चीजें, काली दुनिया तक जल जाती है। ये नाम, इतनी नामों में बदबू और नफरत है। मैं आपको नाम बता रहा हूं, एक तरफ मैंने आपको सूदखोरों के नाम बताए, एक तरफ आपको ऐसे लोगों का नाम बताए जिन्होंने अल्लाह और उसके वक्त के पैगंबर का मुकाबला किया था, अबू जहल से लेकर फिरौन, शद्दाद, निमरूद, कारून, हामान, ये लोग हैं सारे। और एक वो है जिन्होंने अपने ईमान को और अल्लाह की मोहब्बत को बचा के हिजरत की थी, उनके नाम कायनात की रूह है और उनके नाम पर है जादू की आग खत्म, जिन्नात की आग खत्म, कहीं आग लगी है वो खत्म, आग लगी है वो खत्म, अंदर आग है ब्लड प्रेशर की, गुस्से की या गुनहों की, वो खत्म। आग, आग का इलाज है असहाब काफ के नाम। और जादू का सख्त तरीन बुखार, जादू, हाई ब्लड प्रेशर, बीमारियां, लाइलाज, तकलीफें, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग, काला जादू, काली देवी, माता की देवी, ननकारी की देवी, ये इन सब का इलाज है। इलाही बेहुरमत यमली का, मेरे साथ पढ़े, इलाही बेहुरमत यमली का, मक्सल मीना, कशपोतर, किताबों में मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ नाम आए हैं, लेकिन मेरी तहकीक में और बड़ों की तहकीक में ये मुसलमान नाम। कई लोग ऐसे हैं जो खुद उन्हें असहाब काफ मिले और उन्होंने कहा कि हमारे नाम ये। इन नामों के अंदर ताकत है, इन नामों को पढ़ने से जादू खत्म, जिन्नात खत्म, नजरे बद टूट गई, काली दुनिया जल गई, लाइलाज बीमारियां, लाइलाज रोग। आज ही मुझे टेलीफोन प्रोग्राम में खातून ने कहीं किसी मुल्क से बात कर रही थी, कहले भी लव वो कहा, कहफ कहते हैं, कहफ के माने हैं गार वाले, कहफ के माने गार वाले, तारसुस, जिस गार में मैं गया, तारसुस, गार वाले। कहने लगी जो कहफ नाम है ना, सिर्फ लफ्ज कहफ, मैं बच्चे पे पढ़ देती हूँ, बच्चा मेरा सलामत आता है, मैं चीज पे पढ़ देती हूँ, चीज सलामत है, मैं घर की दीवारों पे लिख देती हूँ, घर के अंदर जहरीली चीजें दाखिल नहीं होती,
कहा सिर्फ कहा। आप सांस रोक के कहा पढ़े, सवार महफूज सवारी महफूज, इज्जत महफूज हुरमत महफूज, कहा। अभी नाम नहीं लिए, अभी सिर्फ कहा इशारा है। वो बार वाले सुनो, गौर से सुन, अभी नाम नहीं लिए, अभी उनकी तरफ क्या हुआ है, बोले इशारा हुआ है। गौर वाले कौन से गौर वाले, तो वो जो असहाबे कहफ थे, कौन से यमलीखा, कौन सा मक्सल मीना, कौन सा कशव तक, कौन सा तब यूनिस, कौन सा अजराफत यूनिस, कौन सा यह कशाफत यूनिस, कौन सा यवानस, वो तो इशारा है। इस इशारे में नाम में ये ताकत कहा, कहा अजीब ताकत, लफ्ज कफ में ताकत, सिर्फ कहा उंगली से लिख दे, कहा ताकत, दीवार पे उंगली से लिखते, इशारे से लिख दे, सांस रोक के पढ़ ले ताकत। ये गई बीमारी, ये गया चोर और चोरी, ये गए ठग, ये गई छीना झपटी, ये गया गम पॉइंट, और ये भी जादू और जिन्ना और मुश्किलात, बस कहा। सोचें ये तो लफ्ज कहफ की तासीर है, और जब उनके नाम पढ़ेंगे फिर क्या तासीर हो। और सूरत कहफ पूरी कुरान में मौजूद, कुरान ने कुत्ते का बकायदा तस्करा किया है, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता। याद रखिएगा, बड़ों से एक बात सुनी है, आज एक सबक सुना दो, याद रखना, हमेशा पक्का रखना, मैं भी आप भी इस सबक को ना भूलिएगा। और वो सबक सुना रहा हूं, वो सबक सुना रहा हूं, सुनो सुनो। वो सबक ये है, किसी भी फकीर के की महफिल में आए, और किसी भी फकीर की महफिल में अल्लाह पाक की तौफीक से कदम नसीब हो जाए, तो समझ लेना ये सारे असहाबे कहफ है, मैं इनका कुत्ता। अल्लाह सारी जिंदगी चलना भी नसीब करेगा, आना भी नसीब करेगा, बैठना भी नसीब करेगा, झोलियां भी भरवाएगा, समरात भी देगा, नेमते रिस्क दौलत इज्जत भी देगा, वकार शान और शौकत भी देगा, और अल्लाह नस्लों को भी रंगो रंग माला माल करेगा। ये सारे कौन है, असहाबे कहफ है, और मैं इनका कुत्ता हूं। कुत्ते को रोटी फेंक दें, पानी डाल दें, ठोकर मार दें, और उसको दरसें, धक्के दे दें, कुत्ते में कुत्ता ही होता है। पर राति जागन शेख सदावन, राति जागन कुत्ते तय तो उत्ते, दर साईं दा मूल न छोड़े, दर साईं दा मूल न छोड़े, तोड़े मारो सौ सौ जुते तय तो उत्ते, साई का डर नहीं छोड़ते कुत्ते, तो मारे सौ सौ जूते, सौ सौ जूते मारे तय तो उत्ते, उठ बुलिया चल यार बनाइए, अपने यार की कदर कर ले, अपने मुर्शिद खाने की मुर्शिद की लपा बाजी ले गए कुत्ते, वरना फिर कुत्ते तुझसे बाजी ले जाए तय तो उत्ते, फिर तुझसे ऊंचे हो जाएंगे। हाँ, मैं तो जो किसी फकीर के दर पे आस्ताने और दरगाह पे, जो फकीर के दरगाह और आस्ताने पे फकीर बन के आएगा, अल्लाह उसको अमीर बना देंगे। तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है, और जो जहां हैसियत को लेके आएगा, अपनी इज्जत को, ओहदे को, पैसे को, माल को, अपनी हैसियत को लेके आएगा, अल्लाह पाक का वादा है, अल्लाह उसको बेहैसियत करके दिखाएंगे। सारे असहाबे कहफ है, सारे असहाबे कहफ। अच्छा, फिर ये जज्बा होगा ना, फिर कहीं ठोकर लग जाएगी, कभी गर्मी होगी, कहीं सर्दी होगी, कहीं कोई हाथ पांव के ऊपर रख के चला जाएगा, तो फिर ये नहीं होगा, कहेगा कुत्ते की क्या हैसियत होती है। ये सारे असहाबे कहफ है, मैं इनका कुत्ता हूं, सारे असहाबे कहफ। ये असहाबे कहफ का नाम एक वजीफा है, इतना ताकतवर वजीफा है असहाबे कहफ, ये नाम इतना ताकतवर वजीफा है इतना। और मैंने वहां सबके लिए बैठ के किया, सबके लिए, एक पत्थर पड़ा था सामने, उस पत्थर पर बैठ गया और तसव्वुर में लाया कि असहाबे कहफ सामने बैठे हैं और वो उनका कुत्ता बैठा है और मैं असहाबे कहफ का गुलाम खादिम और उनके दर का मन का भिखारी फकीर आया हूं। असा पिनने महस फकीर हिसे, अब मेरे लफ्ज में बोल रहा हूं, गौर से गहराई में जाएंगे फिर समझ आएंगे वरना समझ नहीं आएंगे। असा पिनने महस फकीर हिसे दर ज्ञान सुजान ते आए हैं, नहीं मिलिया तय महबूब वांगो सारी दुनिया छावन ते आए हैं, सोना ना ठुकरा दर आया को एक तेरे मावन ते आए हैं, सोना ना ठुकरा दर आया को एक तेरे मावन ते आए हैं, हुण राज राज शफकत पिन गिनसो कई वसदे भाण ते आए हैं, कई वसदे घर ते आए हैं, असा पिनने महस फकीर हिसे महज भिकारी है, दर जान सुजान के आए हैं, दर बड़ा पहचान के आए हैं, असहाबे कहफ का वार जिन्होंने अल्लाह के साथ मोहब्बत की, दर जान सुजान के आए हैं, नहीं मिली आता है महबूब मांगो सारी दुनिया छाण के आए हैं, सारी दुनिया कोना कोना छाना है, तू जैसा सखी महबूब नहीं मिलिया, सोना ना ठोकरा दर आया तू एक तेरे मान पे आए हैं, मान रख के आए हैं, अब हमारे मान को ना तोड़ना। मेरा यह तसव्वुर था कि असहाबे कहफ की कचहरी लगी है और एक गुलाम एक मंगता आया बैठा है और तस्बीह खाने का सफीर बनकर, मैं आप सबकी तरफ से सफीर बन के गया था असहाबे कहफ के पास, वो तारसुस शहर पहाड़ ही पहाड़, और एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसकी चोटी कहां है, उस बहुत बड़े पहाड़ के नीचे ये गार है। जब हम गाड़ी में वापस आए तो वो गार नजर आई, अच्छा ये इतना बड़ा पहाड़, खुश्क पहाड़ बिल्कुल, और उसके नीचे वो गार और अंदर ऐसी ठंडक और नमी, ठंडक नमी, जो असहाबे कहफ से मोहब्बत करेंगे याद रखिएगा कयामत के दिन हाफिज, कयामत के दिन हाजी, कयामत के दिन वली सिफारिश करेगा। एक रिवायत में मेरे कमली वाले ने फरमाया 300 घरानों की हाजी सिफारिश करेगा, जिसका हज कबूल है 300 घरानों की, अफराद की नहीं फैमिलियों की, घरानों की हाजी सिफारिश करेगा, हाफिज कुरान सिफारिश करेगा, अल्लाह सिफारिश करेगा। कुरान का हाफिज है, तस्बीह और मसल्ले से निस्बत है, मस्जिद से निस्बत है, उसकी गलतियों से दरगुजर कर लेना, अपने अंदर झांकना, तेरे अंदर इससे बड़े कितने रोग और खोट है, रब ने पर्दे रखे हुए हैं, निस्बत है कुरान से उसकी इज्जत कर लेना, क़यामत के दिन तुम्हें साथ लेके जन्नत में चला जाएगा, सिर्फ निस्बत कुरान से उसकी इज्जत कर लेना, उसकी खिदमत कर लेना, उसको हदिया दे देना, सिर्फ निस्बत कुरान, बस कुछ निस्बत नहीं। मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखरत का सामान है। ये लोग असहाबे कहफ, ये लोग ये क्यामत के दिन सिफारिश करेंगे मोहब्बत करने वालों। और मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा आप यहां हैं मेरी आंखें नहीं देख रही, रब ने पर्दे दे दिए, जिन्नात हैं पर्दे दे दिए, जादू है पर्दे दे दिए, फरिश्ते हैं पर्दे दे दिए, जमीन के नीचे खजाने और कायनात का निजाम है, रब ने पर्दे दे दिए, मुझे जरूरी नहीं कि हर चीज नजर आए, ऑक्सीजन है मुझे नजर नहीं आती, कार्बन है। इसी सर्दी के मौसम में बर्फ पड़ी जब मई में और गाड़ियां बर्फ में दब गई
फिर ऑक्सीजन ही तो खत्म हुई थी और वहीं बैठे बैठे लोग खत्म हो गए थे अपनी गाड़ियों के अंदर, तो ऑक्सीजन नजर तो नहीं आई थी और कार्बन ज्यादा बन गई थी और जिससे फेफड़े खत्म हो गए और सांस बंद हो गया और बंदे वहीं पड़े खत्म हो गए। याद रखिएगा, जिस तरह ये चीजें नजर नहीं आती, इस तरह मैंने कहा मौला यहां असहाबे काफ हैं, हैं तेरे अमर से मौजूद हैं, तेरे अमर से मौजूद है। और फिर मैंने वहां बैठ के असहाबे काफ के नाम एक खास तादाद में पढ़े, मुख्तसर पर एक खास तादाद, और आपकी तरफ से पढ़े। जमीन कितनी है? सात। आसमान कितने? और असहाबे काफ के नाम कितने? पर अजीब निजाम है, सात तो हिंसे में ताकत है, तवाफ सात चक्रों का एक तवाफ होता है और सात चक्रों का एक सफा मरवा होता है। सात के हिंसे में बड़ी अजीब दुनिया है, सात के हिंसे में। और वहां बैठ के उनसे अर्ज किया कि अगर अब आप दुआ करें मैं आमीन कहता हूं। पहले उनके नाम पढ़े, यमलीखा मक्सल मीना कशकुतक तब यूनस अजराफत यूनस कशाफत यूनस यवाना सूस व कल बहुम कितमीर। और फिर मैंने कहा आप दुआ फरमाएं और मैं आमीन कहता हूं। और यकीन से कह रहा हूं, मेरे अंदर के विजदान कहता है उन्होंने दुआ कराई है। और आप तस्बीह खाने वालों के सारे मसाइल मैंने पेश किए हैं और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं तस्बीह खाने से निस्बत रखने वाले उनके मसाइल पेश किए हैं। क्यों? अल्लाह के वली थे, वो दुआ कर रहे थे और मैं उनकी दुआओं पे आमीन कह रहा था। उनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हैं, कबूल हैं, कबूल है। इंशाअल्लाह इतनी बड़ी हस्तियां तो हैं, कुरान में पूरी सूरत उनके नाम पे है, सूरत कहफ। और अजीब बात बताऊं, हदीस सुन ले जरा गौर से, फरमाया कि दज्जाल का जमाना जब आएगा, जो जुम्मे के दिन सूरत कह पढ़ेगा, आइंदा जुम्मे तक रब उसको तमाम दज्जाली फितनों से महफूज रखेगा। या असहाबे काहफ के नाम, असहाबे काहफ के तस्करे, असहाबे काहफ का किस्सा, असहाबे काहफ की सूरत और असहाबे काहफ का कहफ, सूरत कहफ में उस कुत्ते का तस्करा, ये सारा मजमुआ ऐसा है कि ये दज्जाल के फितनों से हिफाजत का निजाम है। और याद रखिएगा, दज्जाल के फितने शुरू हो चुके हैं और दज्जाल के फितने उस वक्त शुरू होंगे जब अलामात कयामत होंगे। और इससे अगर महफूज रहना है और अपनी नस्लों को महफूज रखना है तो जुमे के दिन सूरत कहफ और असहाबे कहफ के नाम और लफ्ज कहफ से निस्बत, लफ्ज कहफ से निस्बत, लफ्ज कहफ इससे निस्बत अपनी मजबूत कर। कहफ नाम के फायदे किसको मिले? कहफ मिले तो बताना, नहीं मिले ना बताना। किसको मिले, क्या मिले? कहते जब भी सर पे दर्द होता है माथे पे कहफ लिखता हूं ठीक हो जाता। ऊंचा बोलो, टाइफाइड बुखार के लिए लिख के दिया, टाइफाइड बुखार ठीक हो गया। जादू जिन्नात के लिए लिख के देता हूं फायदा हो जाता, क्योंकि तस्बीह खाने के साथ निस्बत रखने के बाद बंदा हकीम भी बन जाता है, तीर भी बन जाता है। जी जिस चीज पे लिखा महफूज पाया, कहा उंगली से कहा, बस तीन दफा, पांच दफा, सात दफा, ग्यारह दफा, जिस चीज पे लिखा महफूज पाया, कहा कहा कहा। जी आओ, जहां दर्द के दायरे में असहाब काफ के दरमियान में कितमीर लिखते दर्द खत्म। और जी बच्चा जिद कर रहा हो या उसको सख्त नजर लग जाए, सात दफा सांस रोक के कहते हैं मैं कहां पढ़ता हूं दम करता हूं, बच्चा ठीक हो जाता। कहां सात दफा सांस रोक और कहते कल एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चा रो रहा था, चुप नहीं कर रहा था, बस सांस रोक के पढ़ा बच्चा चुप हो गया। और क्या जादू टूटे थे, हर तरह का जादू टूट जाता है कहां पढ़ने से। अच्छा वजीफे है, अच्छा इसमें ताकत है। मैं सफर में ऐसी ऐसी हस्तियों की बारगाह में हाजिरी हुई है, ऐसी ऐसी। सबसे पहले इस्तांबुल गया, इस्तांबुल के बाद मैंने अंदरून मुल्क 3400 किलोमीटर का सफर किया, 10 दिन 10 शहर, 10 दिन बस। आराम किस चीज का नाम है, एंजॉयमेंट ये क्या है, काफला चल रहा है 10 दिन 10 शहर। अब मैं 10 शहर गिनवा रहा हूं। पहला शहर इस्तांबुल है, इसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है। आले बैत सहाबा बड़ी बड़ी हस्तियों का लश्कर आया और यहां आके अल्लाह का नाम आज भी गली गलियों में हमने जाके हजरत काब बिन मालिक के पास गए, हजरत अबू जर गफारी, हजरत अबू दरदा, बड़ी बड़ी हस्तियां वहां, अबूयूब अंसारी। अबूयूब अंसारी के इलाके का नाम अयूब सुल्तान, उस इलाके का नाम अयूब यानी हजरत अयूब बादशाह, अयूब सुल्तान। तो पहले दिन वहां गए, फिर दियार बकर, दियारे बकर ये वो शहर थे, ये वो शहर है। हम मैंने चहार बकर देखा था समरकंद में, चहार बकर अहलुल बैत, या फिर हजरत इमाम हुसैन के बेटे का नाम बकर, वो बकर मैंने करबला में देखा, उसकी पोस्ट भी आई थी। और ये बकर बहुत पुराना शहर, बहुत पुराना शहर, उसका नाम दियार बकर। दियार बकर से आगे उर्फा, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का घर है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो आग है निमरूद की। और कुदरत का निजाम देखे, आज वहां चश्मे हैं और मछलियां हैं, इतनी मछलियां हैं जिसकी हद नहीं है, कोई पानी गहरा नहीं है। उर्फा अय्यूब अलैहिस्सलाम का घर है जहां 14 साल बीमारी के गुजारे, वो कुआ है जिसका पानी मैं लाया हूं, और उसका पानी कब दूंगा, 9-10 मुहर्रम इंशाल्लाह, हजवेरी माल इस दफा 9-10 मुहर्रम में यहां इतना रश था कि मजमा हजवेरी महल में इंशाल्लाह। और तीन शहर हो गए उर्फा, चौथा शहर था गाजियांतप, गाजियांतप मुजाहिदों का शहर था, गाजियों का, गाजियांतप। कितने शहर हो गए, चार, चौथा शहर। पांचवा शहर था अदना, आइन बाग अदना, अदना एक शहर था बहुत पुराना, उसमें अजीब गरीब चीज है। पांच, छठा शहर था मरसिन, इसमें समंदर भी था मरसिन। और सातवां शहर था तारसुस, नहीं तारसुस, हां जहां असहाबे काफ का वार था। और तारसुस में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का घर भी था, वो पुराने घर भी थे और पुराना मजार भी था। और अनोखी बात बताऊं, एक मस्जिद में मैं गया, मामून रशीद की कब्र, बस इतनी सी जगह ली है, गुमनो किस आय में, तारसुस में, ओहो हो, तीन बड़े आजमों का बादशाह, पाकिस्तान का बादशाह नहीं था, उसकी बादशाहत मुल्तान तक थी, उसकी बात सारे यूरोप तक थी, उसकी बादशाहत सारे अफ्रीका तक थी, उसकी बादशाहत सारे एशिया तक थी। मामून रशीद, इतनी सी कब्र एक मस्जिद के अंदर, कुल्लू कोई नहीं जाता, अजीब झटका लगा, अजीब झटका लगा। तारसुस, तारसुस से पर हम गए कोनिया, कोनिया में वो एक वली और एक दाना का वहां एक वाक्या हुआ। जलालुद्दीन रूमी बैठे हैं, इल्म के बहरे बेकरार हैं, समंदर हैं इल्म अकल के, इल्म जलाल और जमाल के, और शागिर्द बैठे हैं। एक गुदड़ी पोश फकीर आया और किताबें साथ पड़ी थी, और किताबें उस दौर में हाथ की लिखी होती थी, कोई प्रिंटेड तो नहीं थी। किताबों को हाथ लगा के कहने लगा, ये चीज क्या है? उन्हें देखा ना बाबा का हाल, उन्होंने बाबा जा तू नमी दानी है, वो चीज है तुझे पता नहीं है क्या है। उन्हें क्या किया, साथ था कुआं, उठाई किताबें सारी कुएं में डाल दी। इसकी तो सारी जिंदगी का खटिया वटिया किताबा हंत, सारी जिंदगी का नचोड़ी वही था, नहीं चीज तू नमी दानी तुझे पता नहीं। तो बाबे ने क्या किया, ऐसे हाथ कुएं या तालाब में डालता गया और किताबें निकालता गया, और हर किताब खुश्क थी। हैरत का जहान, हैरत का समंदर, पता चला कि सब कुछ किताबों में नहीं, किसी फकीर की गुदड़ी और कदमों में भी होता है। हाँ, बस को अपनी नजर में अदब लिया, तलब लिया, तड़प लिया, जज्बा लिया, फकीर की गुदड़ी में भी बहुत कुछ होता है। बस उसके बाद मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जतें इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दी। फजर की नमाज हमने पढ़ी उनकी मस्जिद में, अपने खाजगान हुआ, जिक्र खास हुआ, बड़ा मजा आया। लाइटें बंद करके जैसे हम जिक्र करते हैं ऐसे जिक्र हुआ। फिर पहले मुर्शिद के पास गए, हजरत शम्सुद्दीन शाह तबरेज। एक मुगल का याद रहे, एक मुल्तान में शम्स तबरेज हैं, ये उन हैं, हजरत पीर रूमी के जो शम्स तबरेज थे वो वहां हैं, कुनिया में हैं। वो शम्स तबरेज की अल्लाह अकबर क्या जलाल था। फिर खादिम उनके हजरत आतिशबाज, ये कौन है? उन्हें के हजरत के लांगड़ी थे, जो कहते थे मेरे मुर्शिद की आस्थाने में तस्बीह खाने में और दरगाह में पिया और भूखा जाए। एक दफा लकड़ियां नहीं थी, जलाल में आके अपने पैर चूल्हे में दे दिए, पांव से ऐसे आग निकलने लगी, सारा खाना पक गया और पांव नहीं जले। उनके मजार को एक बंदे ने ढूंढते ढूंढते हमें पहुंचाया, उन्हें कि हे हजरत आतिशबाज का मजार है। मुर्शिद के खादिम थे, लंगर खाने के जिम्मेदार थे, मेरे मुर्शिद के लंगर खाने में लोग आए और भूखे जाएं, लकड़ियां नहीं है, अपने पन डाल दिए और पांव से आग निकली और सारा लंगर पक गया और पांव सलामत है, कुछ भी नहीं। आतिशबाज। फिर हजरत, हाय हाय, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह इकबाल जिनको अपना मुर्शिद कहता था और इकबाल को हमने वहां मजार देखा, उन्होंने वहां इकबाल का मजार बनाया हुआ है, उनके उनके साथ ही हमने इकबाल का मजार देखा, उन्होंने इकबाल का मिसाली तसव्वुराती एक मजार बनाया है। इकबाल अल्लामा इकबाल की वसीयत थी, अगर मेरी चाहत होती तो मैं अपने मुर्शिद के कदमों में वहीं पूर्णिया में दफन होता। दरवाजे हैं, एक दरवाजे का नाम है बाबे गुस्ताखो और बाबे खामोशा, जो कब्रिस्तान की तरफ से जाता है वह बाबे खामोशा, इकबाल का मजार भी वही है, और एक बाबे गुस्ताखा और एक बाबे, चार दरवाजे हैं। तो गुस्ताखा क्यों? फरमाया गुस्ताख बंदा ये अगर जिसकी जुबान अल्लाह के वलियों के बारे में, आले रसूल असहाब रसूल औलिया के बारे में अगर गुस्ताख है, वो यहां से गुजर जाए उसकी इंशाल्लाह गुस्ताखियां खत्म हो जाएंगी। कुनिया गए, फिर कुनिया से लंबा सफर कितने घंटे का किया? 7 घंटे का बाय रोड सफर। फिर बुरसा गए शहर, बुरसा ये नवा शहर है, नवा शहर है बुरसा, पुराना कदीमी शहर है, मोटी मोटी बिल्लियां, इतनी मोटी बिल्लियां, और बिल्लियों की गिजा बड़ा एहतमाम करते हैं तुर्की वाले, एक मखसूस बिल्लियों के लिबास, दुकान दुकान से गुजर, अक्सर दुकानें वहां जहां बिल्लियों और कुत्तों की गिजाएं और लिबास हैं। अच्छा कुत्तों, किसी कुत्ते के पालते नहीं है, कुत्ते पालते नहीं है, वो बस फिर रहे हैं, उनकी गिजा है, और अक्सर कुत्तों के कानों में पैड लगे हुए हैं कि ये वैक्सीनेशन की हुई है, इनके साथ वैक्सीनेशन की हुई है। मैं कराची में गया, हमारे एक मुखलिस हैं, उनके घर में बिल्ला है, कह लगे ये बिल्ले की गिजा है, ये इसका चार्ट है, फिर इसका पासपोर्ट है सफर कराने के लिए, इसका पासपोर्ट है जहाज में सफर करें तो इसका पासपोर्ट है, फिर इसके बाल बढ़ गए, हमने बाल मुड़वा दिए, बिल्ला डिप्रेशन में चला गया, एंटी डिप्रेशन दवाएं दी गई, कराची की बात है, बिल्ला ने डिप्रेशन में चला गया, बाल बढ़ गए और फिर नाराज हो गया, फिर ऐसे हाथ मार के कहते हैं मुझे मनाओ, मुद्दत से कोई शख्स बुलाने नहीं आया, जलती हुई आंखों को बुझाने नहीं आया, कहता था कि साथ जिएंगे, कहता था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अब रूठ गए हैं तो मनाने नहीं आया, फिर हाथ मारता है मुझे मनाओ, फिर रूठ जाता है, फिर हम 3 दिन उसको मनाया, फिर इसके बाल मेरे क्यों मुड़वाए, मेरा हौसन और जमाल क्यों खत्म किया, एंटी डिप्रेशन दवाइयां दी, फिर इसके लिए नुस्खे तजवीज हो गए, गिजाएं तजवीज हुई, दवाइयां तजवीज हुई, फिर जाके ये किसी हालत में आया और कहा हम लाहौर से कराची आए मोटरवे पे, तो इसको गाड़ी में अपने साथ रखा, एक जगह उतरे, मिट्टी का एहतमाम किया, वहां उसने इजाबत बाफरागत की, 2-4 गैसें निकाल ली, हाँ, वहां दुकानें हैं बिल्लियों के लिबास, उनका फिजा उनका निजाम, इतनी मोटी मोटी बिल्लियां, एक जगह हमने बिल्ली देखी, मैं शायद मुजस्मा बैठा है, वो तो हकीकत में बिल्ली थी, भेड़ भेड़ जितने कुत्ते हैं ये यहां वाले कुत्ते नहीं है, ये तो छोटे से बेचारे, बड़े से बड़ा यहां कोई कुत्ता होगा ना, वो उस कुत्ते के सामने कुछ नहीं है। और जब मैंने असहाबे कहफ के वहां कुत्ते देखे और उनको मुअद्दब देखा, मैंने कहा आज भी कितमीर की ताकत और कितमीर की हैबत इन पे मौजूद है, और नाम कितमीर की बड़ी ताकत है, इसके फिर इलाहाबाद फायदे हैं, नाम कितमीर के अपने फायदे हैं, और 10वां हमारा शहर का सौत, सौत भी कहते हैं, सौत भी कहते हैं, सौत नाम था, वहां अर्तगुल का मजार था, उसकी बीवी का मजार था, उसके बेटे का मजार था, और बुरसा में उस्मान का मजार था, आज भी वहां वो सिपाही खड़े हैं हाथ में कुल्हाड़ा लेके और तलवार लेके और वही लिबास, बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे लगता है मुजस्मा है, मैंने गौर से देखा गौर जींदे, मैंने सलाम किया ना उसने आंख से मुझे ऐसे जवाब दिया, मैंने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, आंख से ऐसे जवाब दिया। उनके मजार पे डिफ्टियां हमारे सामने तब्दील हुई, कुछ आ रहे थे कुछ जा रहे थे, डिफ्टियां तब्दील हुई। आज भी ऐसे वही लिबास सदियों पुराना पहन के खड़े हुए हैं उस्मान के मजार पे, जिसके नाम पे खिलाफत उस्मानिया थी। और फिर आगे बाप का मजार है अर्तुगरुल का, और उसके बाद उसके बेटे, उसके साथी। ये हमारा दसवां शहर था। कुछ कुमरियों को याद, कुछ बुलबुलों को हिफ्स, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के हैं, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के हैं। पर जो मजा साहब काह के गार में आया ना, वाह, दिल्ली की निहारी ना दुख रहे ना बीमारी, ना दुख रहे बस, वो जो मजा उस निहारी में है ना, जो मजा आया ना असहाबे काह के गार में, ऐसा मजा आया, ऐसा मजा आया कि वहां सैलाब जदगान के लिए दुआएं मांगी। और मैं आपको अपना एक इनकलाबी फैसला सुना दूं, मेरा इराक, उर्दन और शाम का सफर मंसूब, मैंने फैसला किया है कि जो पैसे मैं वहां लगाऊंगा वो पैसे मैं सैलाब जदगान में इंशाल्लाह दूंगा। पहले भी अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मेहरबानी से दिए हैं, अब भी मैं अपने और मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह पैसे खुद ही देता हूं। मेरा सारा खानदान जा रहा था, मेरे बीवी बच्चे सब जा रहे थे, तो मैंने फैसला किया है कि आपने सारी की सारी जो पैसे मेरी टिकटों के थे, जो खर्चे के थे, जो पैकेज के थे, गालिबन $2,000 फी बंदा, मैंने वो सफर मंसूख कर दिया। वो सफर मैंने कहा कि नहीं, मैं सारा का सारा सैलाब जदगान को दूंगा, बहुत इस वक्त जरूरत है। और ऐसे वक्त में जाइएगा, ऐसे वक्त में नकदी दें जाके, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नकदी बांटी है, बहुत बांटी है। और मजीद भी फैसला किया है कि राशन बहुत हो गया, अब उन्हें नकद की जरूरत है। और ऐसे अंदाज से हमने काम किया सिंध में, आप हैरान होंगे कि खामोशी से पहले लोग चुने। अब अंदाज देखें, अभी जो सखर में हुआ है अंदाज देखें, खामोशी से पहले नाम चुने, फिर उन नामों को टोकन दे दिए, टोकन दे के अंकरी का टोकन, कहा फला मार्क में आ जाना, जो टोकन आता गया उसको लिफाफा देते गए, ना झगड़ा ना वो दो नंबरी ठगी जो पूरी सैलाब में और जलजले में चलती है, कुछ भी नहीं हो। पहले घरानों के नाम वहां के मकामी हजरात से, जो वाकई जानते हैं कि इनके घर गिरे डूबे मुतासरीन हैं, फिर उनको टोकन दे दिए, कैंप लगाया, उनको एक एक करके बुलाया, और खामोशी से असल हकदारों तक, जिसे मैं जिंदगी के हर सबक में कह रहा हूं कि असल हकदारों को तलाश करना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है। मेरा तो फैसला यही, इराक का सफर, शाम का सफर, हमने 6 नवंबर का फैसला था, 1900 अपराध ने नाम लिखवाए थे अब तक, उनमें जितने भी जाने थे 1900 अपराध ने नाम लिखवाए थे, अब तक फैसला यही किया। कि वो जो पैसे हैं मैं अपने वो मेरी फैमिली के इंशाल्लाह वो सारे सैलाब जदगान के लिए, कहें अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह अपनी रजा अता फरमाए, अल्लाह अपनी रजा अता फरमाए। हम मुर्शिद उनके अर्तुगरुल के मुर्शिद शेख इब्ने अरबी के बेटे शेख सदरुद्दीन कुनवी के मजार पर गए। जब इब्ने अरबी का विसाल हो गया तो उनके बेटे, रूहानी बेटे शेख सदरुद्दीन को फिर इन बुजुर्गों ने ان خلافت عثمانیہ کے بڑوں نے اپنا مرشد بنایا تھا، حتیٰ کہ دشمنوں نے یہاں تک کہا، مجھے وہاں مقامی ایک بندے نے بتایا، اس نے کہا ان کو شکست دینی ہے تو ان کے مرشد کو مارو، کیوں؟ مرشد کا پیچھے ہاتھ ہے، نگاہ ہے، دعا ہے، توجہ ہے، تم اس کو شکست نہیں دے سکتے، ان کو شکست دینی ہے تو ان کے مرشد کو قتل کرو. اور انبیاء، کس انبیاء پہ؟ حضرت ذوالکفل کے مزار پہ گئے، حضرت یوشع علیہ السلام کے مزار پہ گئے، حضرت یسعٰ قرآن میں ان کا تذکرہ، ان کے مزار پہ گئے، اور حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پہ. ایک روحانی سفر تھا، اس روحانی سفر نے زندگی کے جہاں بہت سارے سبق دیے، وہاں روحانی سفر نے بیت الخلاء کی دعا کی انوکھی تاثیر دکھائی کہ جو مرد عورت جن کے کپڑے نامکمل ہیں، جسم ڈھکا ہوا نہیں ہے، اور اس سے ایمان اگر انسان کا متزلزل ہوتا ہے، تو وہاں کثرت سے بیت الخلاء کی دعا پڑھیں، اس کی تاثیر دیکھی. اور دوسرا اصحاب کہف کی لذتیں اور ان کی غار میں جو سرور اور سکون اور کمال ہے. ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اصحاب کہف میں اگلی سے پچھلی صف میں تھا، دوسری صف میں تھا، جو وہاں جمعہ پڑا ہم نے، تارسس شہر کا نام، جمعہ پڑھا، اگلی سے پچھلی صف میں میں تھا. میری آنکھیں، پتہ نہیں میرا اپنا ایسے گمان ہے جسے میں اپنا کشف تو نہیں کہہ سکتا، میری آنکھیں غلط بھی دیکھ سکتی ہیں، اسے میں اپنا کوئی دعویٰ تو نہیں کہہ سکتا، اور میرا تھا گمان 100% اصحاب کہف سامنے کھڑے ہیں، اور ہر نماز میں، جمعے کی نماز میں موجود ہے. اور ایسے احساس ہوا کہ مسجد کے باہر کتا بیٹھا ہوا ہے اصحاب کہف کا، وہی موجودہ والا نہیں، وہی ہزاروں سال پرانا بیٹھا ہوا. اور اصحاب کہف کے نام روزانہ میں آپ صرف 3, 7, 11 بار پڑھ لیا، بس 3, 7, 11 بار پڑھ لیا کر، ضرور یاد کریں. اور کہف لفظ سے دوستی کریں، لفظ کہف ہے اس سے دوستی کریں، کہف لفظ سے دوستی کریں. سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اندر سانسوں میں کہا، اچھا جہاں کہا، کہا پہ دس نیکیاں، ہا پہ دس نیکیاں، فا پہ دس نیکیاں، 30 نیکیاں ملتی ہیں صرف پڑھنے سے. قرآن ہے نا، 3 حروف ہیں، کہا پہ کتنی، اور ہا پہ اور فا پہ، 30 نیکیاں تو صرف پڑھنے سے مل جاتی ہیں. اور یہ 30 نیکیاں میرے اللہ نے بتائی ہیں، میرا اللہ کہتا ہے یہ تمہارے سمجھانے کے لیے ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، میں اس سے زیادہ دینے والا ہوں، میں چاہوں 30 کو 70 کر دوں، 70 کو 70 لاکھ کر دوں، 70 کو 70 کروڑ کر دوں، ارب کر دوں، مجھ سے کون پوچھ. ایک نیکی مجھے اور، ایک خوشی اور ملی. میں استنبول کے، استنبول شہر میں 3 ایئرپورٹ ہیں، اتنا بڑا شہر، 3 ایئرپورٹ ہیں. استنبول کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا تو 7 پلر کے ساتھ نا ایسے گول سی کرسیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، میں وہاں بیٹھا تھا، ایک جوان بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ پٹھان ہے لگتا ہے کوئی، کہاں کے ہو؟ میں کہہ رہا میں کابل کا ہوں. کہ قوم کیا ہے؟ کہہ رہے اخوان زیادہ زئی، اخوند زادہ زئی. ترکی کیسے آئے تھے؟ کرے ڈنکی لگا کے. پاکستان سے بلوچستان آیا، بلوچستان سے غیر قانونی ایران میں داخل ہوا، ایران سے پھر ترکی، 15 دن پیدل بھی، بسوں کے اندر بھی، گاڑیوں میں، جیسے بھی، 1.5 سال یہاں رہا. अम्मा मर गई है। कितनी उम्र है? मैंने कहा कह मेरी उम्र अब 18 साल हुई है। उसके बाद एक छोटा सा बैग था और उसकी ईरान की फ्लाइट थी। ईरान से कहने लगे मैंने जाना है फिर आगे काबुल जाना। उसके चेहरे पे मैंने देखा जवानी शबाब, पर मैंने पता नहीं क्यों नूर महसूस किया। उस शोख नौजवान को नसीहत मैं क्या करूं, बरसों किसी की ताक में दीवाना मैं भी था। अरे लोगों देखो क्या जुल्म कर रहा है, अरे लोगों देखो देखो क्या जुल्म कर रहा है कि किसी मरने वाले पे मर रहा है। किसी खाकी पे मत रखा अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पे के जिसने दी जवानी। अच्छा उससे ऐसी बातें करता रहा, कहने लगे बस मैं अब अम्मा मर गई है एक महीना पहले, फिर वापस नहीं आऊंगा, घर खाली हो गया। तो मैंने कहा कितने पैसे कमाता था? कहने लगे पेंटों की फैक्ट्री थी, वहां मैं पेंटों पे ब्रश मारता था और ये करता था, बस इतने घर भेज देता था, इतना खुद गुजारा कर लेता था। 1.5 साल यहां रहा। नमाज का वक्त हुआ, हमारी फ्लाइट को कुछ देर थी, हमने तुर्की से दोहा के एयरपोर्ट पे आना था कतर, फिर कतर के एयरपोर्ट से हमने लाहौर आना था। तो हमने कहा नमाज पढ़ ले। वुजू करते हुए मेरे दिल में आया तारिक तेरे पास 1800 लीरे बचे हुए हैं, लीरा वहां की तुर्की की करेंसी है, इसको दे दे। मैंने वुजू करके ना मैं और मेरा बेटा दोनों भागे उस जगह पे जहां वो बैठा था, नहीं था। अच्छा मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं, नमाज की बरकत से अल्लाह मिलवाएगा, नमाज की बरकत से अल्लाह मिलवाएगा। और नमाज की बरकत एक वाक्य और भी सुनाता हूं। एक बंदे ने मुझे वहीं चैलेंज किया था एक बंदा मिल गया मुझे चैलेंज करने वाला, वो भी सुनाता हूं। तो हम नमाज पढ़ ली, तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा दूसरे से कहा, मैंने कहा जाओ। वो उसको ढूंढ के ले आया। तो मैं मस्जिद में ही बैठा था, वहां मुसल्ला बना हुआ था एयरपोर्ट पे नमाज की जगह। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरी तरफ से हदिया है, 300 मैंने अपने पास रखे, खर्चा की कोई जरूरत एयरपोर्ट पे हो जाए, 1500 लीरा उसको दिया मैंने मेरी तरफ से। उसकी आंखों में आंसू आए, मैंने नहीं लेता, मैं मुस्तहिक नहीं हूं। मैंने कहा देख मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूं, तोहफा दे रहा हूं, तेरे दिल में था कि मैं तुझे दूंगा, मैं एक अनजान सा आदमी, तू भी अनजान आदमी, मैं तू मुझे जाने ना मैं तुझे जान, मैं तुझे दे रहा हूं, नहीं मानो। फिर मैंने उसे एक हदीस सुनाई, फिर मान। अब वो हदीस आपको सुनाता हूं। एक सहाबी को मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज दी, उसने या रसूलल्लाह मेरे लेने का मिजाज नहीं, मेरा सवाल का लेने का मिजाज नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया, उसका नाम लेके मफहूम है, बिन मांगे जो चीज मिले ले ले, रद न कर, कहीं ऐसा ना हो एक वक्त आए तू मांगे और अल्लाह ना दे, तू मांगे और अल्लाह ना दे। जब मैंने बात कही ना तो टूटे हाथों से उसने उससे पैसे ले लिए। मुझे ऐसी राहत मिली, ऐसी राहत नहीं सोच सकते। मैं आपको अपनी सखावत बयान कर रहा हूं, ये मेरा दिल और अल्लाह का मामला है। मैं अपनी शोहरत चाह रहा हूं, ये मेरे दिल का मामला और अल्लाह से मामला है। फिर भी मैं अपने मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। राहत मिली, गरीब बिल्कुल गरीब। हम दियारबकर एयरपोर्ट के लिए इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे जा रहे थे, तो वहां एक फैमिली मिली लाहौर की रहने वाली। कह लगे 10 साल और 11 साल के हमारे दो बच्चे हैं, इन्होंने जूतों की फैक्ट्री में काम किया, यहां हर बंदा काम करेगा तो खाएगा। 10 साल का बच्चा ये खड़ा है, 11 को खातून ने मुझे पहचान लिया, आप अबकरी वाले हैं। और जो जिस बंदे ने चैलेंज किया मैं वो बता दो, इशा की नमाज हमने पढ़ी कुनिया में, होटल मसनवी होटल का नाम था मसनवी होटल, सामने ही था। इशा की नमाज पढ़ी तो पहली रकत रह गई, दूसरी में शामिल हुआ मैं भागते भागते। तो मैं बाहर आया ना तो एक साहब मिले, पाकिस्तानी लिबास, गलबन सियाल गुजरांवाला के थे, गुजरांवाला के सियालकोट के थे। कह लगा मैंने देख लिया ये अक्री वाला हकीम है, आप वही हकीम साहब हैं। मैंने देख लिया का, मैं दो दिन से मांग रहा था बाबा जी से, बाबा जी उस बंदे से मिलवाओ, सुना है बड़ा आदमी है किसी से नहीं मिलता, और वो बिल्कुल किसी से नहीं मिलता, और उससे मुलाकात बहुत मुश्किल है। और कहा जब मैंने आपको देखा तो मेरे दिल में आया कि मैं नमाज सलाम के बाद मुलाकात करूं। मैं कह नहीं, नमाज को तवज्जो से पढ़, खुशू से पढ़। फिर नमाज में ख्याल आया मुख्तसर करूं, मैं कह छोड़ो, हकीम तारिक छोटा है नमाज बड़ी है, इस नमाज के जरिए से हकीम तारिक तुझे खुद मिलेगा, देख तो सही। अल्लाह हू अकबर, नमाज का यकीन, और ये असल यकीन है। बाहर मुझे उसने बताया, उसने कहा मैंने नमाज पढ़ी है तवज्जो से, और फिर मैंने उसे अपना वाक्य सुनाया। मैंने कहा तेरी नमाज की ताकत बताऊं क्या है। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा ये पाकिस्तानी लिबास में एक बंदा था टोपी वाला, उसे ढूंढ के ले आ। बेटा ढूंढेगा तो उसको मिला नहीं, ढूंढने गया था तुम, गए नहीं मिला, और उसने नमाज की ताकत ऐसी थी, अल्लाह ने मुझे पकड़ा बांधा और इसके सामने पेश कर दिया। मैंने कहा जा खड़ा हो जा इसके सामने। उन्होंने नमाज, कह रहे मेरे दिल में आया नमाज मुख्तसर करूं, उन्होंने कहा नमाज बड़ी है तारिक छोटा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा है। यकीन वाली नमाज ऐसी होती है। फिर मैंने उससे कहा, मैं कहा मेरी मजबूरी है या मगरूरी है, मैं लोगों से मिलता हूं, मैं गली में खड़े बाग लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं नहीं मिल सकता, दिल में रोता हूं कि अल्लाह ये दुखियारा गम का मारा था, मेरी मजबूरी है कि मैं एक खिदमत के बाद अगली खिदमत में भाग दौड़ कर रहा हूं, अगर गली में जगह जगह खड़ा हो गया तो मेरी दूसरी खिदमत, वो भी मखलूक की खिदमत है, खिदमत खल्क है, वो चूक जाएगी। नमाज की ताकत, उसका यकीन था, और उसका तवक्कुल देखे उस जवान का, आंखों में आंसू थे। मैं नहीं लेता, मैं मुस्तहिक नहीं हूं, मैं गिफ्ट दे रहा हूं तुझे, गिफ्ट दे रहा हूं, तू वाकई मुस्तहिक नहीं। इसे कहते हैं गैबी मदद। फरमाया जो बंदा अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार लाजम कर लेता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से खिलाता है जहां से गुमान नहीं, ऐसी जगह से पिलाता है जहां से गुमान नहीं, मफ़हूम है, ऐसी जगह से मदद करता है। उसका गुमान था कि मुझे 1500 लीरा मिलेगा, और वो 1500 लीरा उसकी आधे महीने या 10 दिन की मजदूरी या पता नहीं कितने दिन की मजदूरी थी, उसको मिला। जब जिंदगी में उस करीम से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, अल्लाह गैब के खजाने से लोगों के दिलों में डालेगा, फिर सवाल के दरवाजे नहीं खोलने पड़ेंगे, फिर सवाल के लिए चाल को लंगड़ा नहीं करना पड़ेगा, कपड़ों के ऊपर कपड़ा नहीं पहनना पड़ेगा। मैंने एक साहब को देखा, यहां रिवर्स गार्डन है उसकी मस्जिद में, वो पुरानी बात है, वो होते थे सर्दियों में एक कमीज के ऊपर दूसरी कमीज रंगीन पहनते थे, एक जूती की जगह दूसरी जूती पहनते थे, और कमीज के ऊपर तीसरी कमीज पहनते थे, कि लोगों को चाल से बताते थे मैं मुस्तहिक हूं। ना चाल से बताना पड़ेगा, ना हाल से बताना पड़ेगा, ना सवाल से बताना पड़ेगा, ना ढाल से बताना पड़ेगा, फिर अल्लाह ऐसे जरिए से मदद करेगा जहां से गुमान नहीं होगा, जहां से तसव्वुर नहीं होगा, जहां ख्याल नहीं होगा। 8 दिन ड्राइवर हमारे साथ रहा, 8 दिन मुसलसल गाड़ी, 8 दिन सरावर साथ रहा। जब उतरा ना तो मैंने उसे 2 बड़े नोट दिए, एकदम उसकी आंखों में ऐसी चमक, हैरत, कुमार से बाला करता। और फिर मेरे दिल में एक हदीस आई, मिश्कात शरीफ की हदीस है, जो किसी मुसलमान को अचानक खुश करते, क्या खुश करे, क्या खुश करे। अल्लाह कहता है मेरे बंदे इसका बदला, इसका बदला जन्नत है। अचानक खुश हुआ, अचानक खुश हुआ। मैंने उसको $200 दिए, उसकी भी कहा अचानक कैसे। मैं कह रही कि तेरा गिफ्ट है, 8 दिन हमारे साथ रहा है, गरीब आदमी, सफर जिंदगी का अगर बेहतरीन चलाना है ना, तो पहले दिन का सबक अपना मजबूत करें, अपनी नस्लों को कहें बड़ा होके क्या बनना है ये सबक। और अगला सबक ये है कहफ न भूलें, और अगला सबक ये है असहाब कहफ न, अगर नाम याद नहीं है तो, और 11 दफा सुबह शाम दज्जाली फितनों से अगर बचना है और ईमान कब्र में साथ लेके जाना है, मौत के वक्त ईमान साथ लेके जाना है, तो फिर असहाब कहफ के नाम और कहा इसको ना भूलिए। जिंदगी लाजवाब गुजरेगी, बेहतरीन गुजरेगी, और जिंदगी में राहत मिलेगी और मौत भी राहत में आएगी, और मरने के बाद इस्तकबाल 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 हो, और ऐसा इस्तकबाल आप गुमान नहीं कर सकते, आप ख्याल नहीं कर सकते, ऐसा इस्तकबाल आप गुमान और ख्याल नहीं कर सकते। और जनाजे की दुआ याद करेंगे सारे याद, पक्की बात है, जनाजे की दुआ जरूर याद करें, जरूर याद करें। आज के प्रोग्राम में मैंने एक चीज बताई है, मैं क्या बताऊं आपको। एक खातून कह रही थी कि मेरे बेटों के लिए बड़ी डिग्रियां, बड़ी दौलत, बड़ा माल, बड़े मुल्क। मैं उनकी बातें सुन रहा था, मां के दिल में सच्चाई और खुलूस था। सुनते सुनते मैंने कहा अपनी अपनी नस्लों और औलाद को कि आखिरत का भी कोई सबक सोचा। फिर मैंने वाकया सुनाया, हमारे पड़ोस में एक घराना था, इतना माल था कि उनके घर में मैंने सोने का कंगन बच्चों को ऐसे खेलते देखा जैसे किसी वो चीजों से बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, सोने का कंगन भारी, और मां को परवाह नहीं थी, मां को परवाह नहीं थी। और मां कहती थी मेरे बेटे बड़े आदमी बनेंगे, और बच्चों से पूछती थी बड़े होके क्या बनना है, कोई कहता था मैं ये 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 ये, और सिर्फ बच्चों को अपने लिए ना बचाया, सारी कायनात के लिए बचा लिया। अब जनाजा था, मैं जनाजे में देर हो गई मुझे, मैं भागा भागा जा रहा तो देखा तो उनका बड़ा बेटा वो भी जा रहा, और बड़े बेटा जोर जोर से हवा निकाल रहा था। मैंने कानों से सुनी है वो उसी हवा निकालते हुए जनाजे में शामिल अगली सब में हुआ है कि बड़े बेटे का इंतजार हो रहा था, वो आए तो मां का जनाजा पढ़े, आखिरी वक्त में मां को कुछ ना दे सका, मां को कुछ ना दे सका। क्यों? उस मां ने पहले दिन से यह सबक सिखाया था, बेटा बड़े होके क्या बनाएगा, बड़ा होके क्या बनेगा। और अगली जुमेरात आपके लिए खुशखबरी है कि सूरत इखलास की जुमेरात है, पता है ना, 11 जुमेरातें नसीब वाला होगा, और पिछली तारीख हमारी गवाह है। मैं सिर्फ मुख्तसर कहूंगा, पिछली तारीख गवाह है, जो भी 11 जुमेरातों में आया है मन की मुरादें पाई हैं, मुश्किलात, हालात, मसाइल, परेशानियां, कर्जे, उलझने, जादू जिन्नात, बीमारियां, और अल्लाह पाक ने ऐसे अंदाज से टाला है, जो भी आया है, जो भी आया है। आइंदा जुमेरात सूरत इखलास की जुमेरात, जिसमें 40,000 दफा मिलके सूरत इखलास सिर्फ 10 मिनट में पढ़ेंगे, 5-10 मिनट में, इतना बड़ा मजमा और पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ, क्या पता जिन्नात भी हों, फरिश्ते तो यकीनी हैं। ये आइंदा जुमेरात खास जुमेरात है और शुरू हो रही है, और उसका इख्तिताम जो है, आइंदा जुमेरात का इख्तिताम, वो इंशाअल्लाह ताला वो उस पे जो है हलवा रोटी, आइंदा जुमेरात में इख्तिताम। और आप चाहें तो कोई और चीज भी जो है इंशाअल्लाह अपने हाथों से तकसीम करें, 8 दिसंबर को उसकी अख्तितामी दुआ अलविदाई दुआ होगी 8 दिसंबर को। ये अमल न छोड़िएगा, 40,000 दफा। और बताऊं, गौर से सुनिए, जहां 40 परदेशी हों, ये मेरा पैकेज गौर से सुन लें, 40 परदेशी हों, परदेशी हाथ खड़ा करें, ये सारे परदेशी हैं, जहां 40 परदेशी हों और उनको इकट्ठा करके जो दुआ मांगी जाए रब्बे काबा की कसम कबूल होती है। और अगर परदेशियों की एक बहुत बड़ा काफिला परदेशियों का, एक टीम परदेशियों की, एक जमात परदेशियों की, और सूरत इखलास भी पढ़े और गिड़गिड़ा के दुआ भी मांगे और अल्लाह के खजानों में, तो अल्लाह फैसले करता है और करके दिखाता है। परदेशी, और जहां बूढ़े हों, सफेद दाढ़ी वाले हों, और जहां जवान हो तौबा करने वाले, ओहो हो, फैसले तो हो ही जाते हैं और 100% होते हैं। तो आइंदा जुमेरात से सूरत इखलास का खास अमल हो रहा, और जिसने भी कदरदानी की है, पिछली तारीख गवाह है, पिछली तारीख गवाह है, जिसने कदरदानी की है, और जो जज्बों से आया और फकीर बन के आया वही अमीर बन के गया है। रब ने उसको रंगा है, नवाजा है, अता किया है, और उसको रब ने मालामाल किया है, ये पिछली तारीख गवाह है। आए हम 3 बार दरूद शिफा पढ़ लें, रूहानी जिस्मानी बीमारियों का तसव्वुर करते हुए, अपने मरीजों का, मुखलसों का तसव्वुर करते हुए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बियादति कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बियादति कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन بعدد كل داع ودواء وبارك وسلم। और ये सवाब सारा और जितना भी नफली सवाब है, जिक्र, तस्बीह, आमाल, ये सारा जमा करके तसव्वुर में हमने ढेर कर दिया, फरिश्तों ने हमारी झोलियां भर दी और हम अपने अजीजों को और पूरी उम्मत को दे दिया, पूरी उम्मत को हदिया कर दिया और अपने मौसलों को, अपने अजीजों को हदिया कर दिया। अल्लाह अकबर, अभी अजीजों को हदिया कर दे और इंसानियत के लिए राहत के फूल बिखेरे और दुखों के कांटे चुने। हम सारे ये फैसला करें, हम सारे के सारे ये फैसला करें कि इंसानियत के लिए इंशाअल्लाह ताला फूल चुनेंगे। और वो मैंने आपको अपना फैसला जो सफर में जा रहे थे 6 नवंबर को बता दिया कि इंशाल्लाह मेरा फैसला यही है कि जितने भी वो पैसे जितने पैकेज के थे वो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैं सैलाब जदवान की मदद के लिए मैंने रख ली इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इसमें आजम का जो रूहानी दम है वो 12 रबीउल अव्वल को है, कश्फुल माजूब भी, रूहानी दम भी इसमें आजम का, और 12 रबीउल अव्वल के 9 रूहानी पैकेज हैं। एक तो हुजूर के मुंह मुबारक, बाल मुबारक की ज्यारत कराई जाएगी, दूसरा उस बाल मुबारक अब पानी दिया जाएगा, और अगला 7 रंगी धागा और काली कंघी का अमल कराया जाएगा, अजीब अमल है, अनोखा अमल है, और अगला अमल बे औलादों के लिए सेब और लौंग का अमल कराया जाएगा, और अगला अमल हजरत दुआए वसीला हुजूर के घराने का आजमूदा अमल, उनके वसीले से एक अमल कराया जाएगा, और जाए नमाज 7 जरूर लाएं और अपने नाम का इस्म आजम मालूम कर लें, सारी जिंदगी थोड़ा सा वो पढ़ें हर मुराद पूरी, और अगला मिसवाक लाएं, हिफाजत और बरकत के खजाने साथ ले जाएं, और अगला अमल ये रबीउल अव्वल के हैं, अपनी और अपने प्यारों की तस्वीर लाएं, उस पे अमल कराया जाएगा और वो तस्वीर आप वापस ले जाएं, बेहतरीन अमल होगा, और आखिरी रूहानी जानिसारों की अख्तितामी दुआ का अमल होगा और इसमें आजम का दम होगा। ये 12 रबीउल अव्वल तस्बी खाने में ही अमल होंगे, सारे तस्बी खाने में, और रूहानी जानिसारों का दूसरा 140 दिन का अमल इंशाल्लाह उसकी दुआ जो है 12 रबीउल अव्वल बाद नमाज असर होगी, और सब्ज मीठे चावल जिसमें मेवा जात भी सब्ज हो, सब्ज मुरब्बा, सब्ज पिस्ता, सब्ज इलायची, सब्ज मिठाई, ये 12 रबी अलवल को पका के लाएं, और इसके अलावा भी लंगर लाएं और दिल खोल कर लाएं और अपने हाथों से खुद तकसीम करें। तस्बीखाना लाहौर में हर हफ्ते 3 दिन का रूहानी चिल्ला जुमेरात असर ता एतवार जोहर तक होता है। इसमें हाजरी दें और अपने मसाइल हल कराएं, जो भी आया मुरादें पाकर गया। बूढ़े हैं या जवान, दुनिया आखिरत की अगर तमाम खैरें पाना चाहते हैं तो चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने तस्बीह खाने में गुजारे, सारी मुरादें पूरी, सब मुश्किलें हल। बूढ़े और रिटायर हजरात अपनी जिंदगियां वक्फ करें, बूढ़े और रिटायर अपनी जिंदगियों चंद दिन, चंद दिन, चंद महीने वक्फ करें, यहां दिन का कुछ हिस्सा आ जाया करें। उसके लिए हमारे टेलीनार के नंबर पे मुसलसल मैसेज करें और यहां के जिम्मेदारों से मिले। अगर आप चाहते हैं कि घरों में सुकून हो, जिंदगी में चैन हो और नस्लों में कभी बे औलादी और तलाक ना हो, तो ऐसे हजरात और नए जो शादीशुदा जोड़े हैं 21 जुमेरात को उनकी रूहानी महफिल तस्बीह खाने में मन्नत माने हाजरी। हमेशा मगरिब से पहले आए, दुआ से पहले ना जाए। जो जुमेरात मजबूरन चूक जाए बाद में पूरी कर सकते हैं। और हर महीने काफी रूहानी तिब्बी तजर्बात, मुशाहदात, कोई नक्श तावीज वाकयात लिखें और पहुंचाते रहें। और हवेली में चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने हवेली में गुजारें खिदमत के लिए, मेरे और मेरे वालिदैन की दुआएं पाने के लिए। तस्बीह खाने का चंदा हमारा तस्बीह खाने का चंदा है हामीम लायुम सारून 13 बार, 313 बार, या हफीजो या सलाम 11 बार, या एक तस्बीह 11 बार, या एक तस्बीह हो, यह तस्बीह खाने का चंदा है। और जामी सारों का अमल, हिफाजती अमल और दुआएं अल्लाह पाक के खजानों से, मेरा, मेरी नस्लों का, तस्बीह खाने का और तमाम निजाम का तसव्वुर करके। जिक्र खास का तार तस्बीह खाने की अमानत है, साथ ना ले जाएं। पार्किंग में तामन करें, रकम इदारे को नहीं जाती, क्योंकि मुस्लिम गैर मुस्लिम सब रहते हैं, सबके हकूक हैं। और तस्बीह खाने में बिजली, सोलर, प्लम्बर, पेंट, लकड़ी, लिफ्ट मैकेनिक, स्पीकर की मुरम्मत देखभाल के लिए अपना नाम टेलीनार के नंबर पे भेजें, अपने नाम पे नंबर पर भेजें और जरूर भेजें और इस खिदमत में हिस्सा मिलाएं। छोटी छोटी मुरम्मत निकलती रहती है। 3 तावीजात का मजमुआ लिखते रहें और पहुंचाते रहें, यह 125 करोड़ के दरूद पाक के चिल्ले में अमानत लौटाई जाएगी। अगर आप अपने सेकंडों में अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो फिर चुप करके अपनी यूट्यूब चैनल दुखियारों को, गम के मारों को, लोगों को सब्सक्राइब कराएं, अपना मिशन बना लें। यह सदका जारिया है, आप लोगों के दुख दर्द दूर करेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख करेंगे। हजवेरी महल में मोबाइल के सिग्नल का मसला जू का तू है, कोई शफकत करने वाला, तवज्जो करने वाला इस पे तवज्जो करे। आइंदा 9-10 मुहर्रम रूहानी पैकेज हजवेरी महल में होंगे। तुर्की, इंग्लिश, अरबी और उज्बेक जबान जानने वाले अहबाब टेलीनार के नंबर पर राब्ता करें, उन पोस्टों को बहुत ज्यादा फैलाएं और टेलीनार के नंबर के जो जिम्मेदार हैं वो उन पे तवज्जो करें, जो उनसे राब्ता करें उनको अपने राब्ते में रखें। तुर्की जबान, इंग्लिश जबान, अरबी जबान और उज्बेक जबान, इसको जानने वाले हजरात बार बार राब्ता करें। इंशाल्लाह सखर की महफिल 30 दिसंबर जुमे के दिन होगी, सखर की महफिल 30 दिसंबर जुमे के दिन होगी। और कराची का महफिल 5 मार्च बरोज एतवार सुबह 10 बजे होगा, और क्वेटा की महफिल 10 मार्च बरोज जुमा दोपहर 2 बजे होगी क्वेटा में, इंशाल्लाह ताला क्वेटा में। अब गुठलियों का अमल है, बहुत ताकतवर अमल है और बहुत जबरदस्त अमल है गुठलियों का अमल, और इस पे जितनी तवज्जो होगी अपनी इतर की शीशी आप जरूर लाए होंगे, हर दफा लाया करें, और अपनी हथेली पे थोड़ी सी इतर लगा लें, हथेली के ऊपर लगा लिया, खुशबू लगा ली। अब अपनी मुट्ठी में गुठलियां ले लें, अपने मुट्ठी में गुठलियां ले ली और गुठलियों को खुशबू लगा दी, खुशबू लगा दी, हाँ जी, और दोनों हाथों की गुठलियां लेकर मुट्ठी बंद करें और तस्वर करिए, आप देखें मेरी मुट्ठी बंद है, दोनों मुट्ठियां बंद है, दोनों मुट्ठियां बंद हैं, और तस्वर यह है कि या अल्लाह मेरी जिंदगी ऐसे बंद है, रिस्क बंदिश, रिश्ते सेहत हर चीज बंदिशों में बंद है, और मैं तेरा नाम पढ़ूंगा, अल्लाह का नाम या अव्वलो, 11 बार सांस रोक के पढ़ना है, या अव्वलो, और फिर इस मुट्ठी पे दम करके इस मुट्ठी को ऐसे खोलना है, और इस तस्वर के साथ कि मेरी सारी बंदिशें खुल गई, इस मुट्ठी को ऐसे खोलना है, ये मुट्ठी के अंदर गुठलियां, बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर, और ये मुट्ठियां बंद हैं, बंद हो गई। अब पढ़ें या अव्वल, मुठियां खोलें इस तस्वर के साथ कि तमाम बंदिशें खुल गईं। अब आधी गुठलियां एक हथेली में, आधी दूसरी में, और दोनों को आपस में खुला रखें, मिलाई नहीं, एक इस रान के ऊपर, एक उस रान के ऊपर, और अब लफ्ज पढ़ेंगे या आखिरो 11 दफा। पहले तो अव्वल से आखिर है, पर मेरी जिंदगी की अखीर हो गई है, मेरी मुश्किलें, मेरी परेशानियां, मेरी बंदिशें, मेरी तकलीफें, मेरी नाकामियां, ए मौला इनको खत्म कर दे, पढ़ें या आखिर। आप दोनों गुठलियां आपस में मिक्स करके इसको दुआ की शक्ल में दोनों हाथों में लें, दोनों हाथों में दुआ की शक्ल में, और उसके बाद हमने पढ़ना है 11 बार या जाहिरो। क्या पढ़ना है? अल्लाह अपनी मोहब्बतों को, अपने ताल्लुक को, अपनी मदद को अब जाहिर कर, हमें आंखों से दिखा, अल्लाह तेरी मदद, तेरा ताल्लुक, तेरी उल्फत, तेरी शफकत, तेरी मेहरबानी, और जादू का टूटता आंखों से दिखा, और जिन्नात का जलता आंखों से दिखा, अल्लाह मेरे मसाइल का हल होना मुझे आंखों से दिखा और जहर कर दे, पढ़े या जाहिर हो। अब झोली में डाल दे और तसव्वुर करें कि जिस तरह मेरी गुठली झोलियों से भर गई है, इस तरह उसकी रहमत, उसकी बरकत, उसकी अता, उसकी मदद से, रिस्क दौलत इज्जत से मेरी झोलियां भर गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बरकत दे, और ये गुठलियां कभी साथ ना ले जाएं, और गुठलियां हमेशा दे के जाएं। और आपको इल्म है ये वो गुठलियां हैं जो रमजान में रोजेदारों के मुंह से निकली हुई हैं, और रोजेदारों की मुंह की बू अल्लाह की बारगाह में मुश्क से ज्यादा, और फरिश्ते इसको पसंद करते हैं। ये वो गुठलियां हैं जो रोजेदारों के मुंह से निकली हुई हैं, ये वो गुठलियां हैं, ये वो गुठलियां हैं। अब जिक्र खास होगा और फिर उसके बाद इसमें जात का जिक्र होगा, और उससे पहले बैत का अमल होगा, जो पहले से बैत हो चुके हैं वो तजीद बैत कर ले, और जिन्होंने नई बैत करनी है वो मेरे साथ कलिमात बैत के पढ़ते जाएंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू واشهد ان محمد عبده ورسوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله العظيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے صغیرہ کبیرہ گناہوں تیری ہر نافرمانی سے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما انشاءاللہ اب ذکر خاص ہوگا پھر اس کے بعد اس میں ذات کا ذکر مراقبہ اور دعا ہوگی جتنی توجہ دھیان سے کریں گے اور جتنا دل کی درد کی گہرائیوں سے کریں گے اتنی قبولیت محبوبیت اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ مسائل حل اور اٹھتے ہوئے اتنا زیادہ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی تو ذکر خاص دل کی گہرائیوں سے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے اور پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے کریں گے جتنا دھیان توجہ ہوگا اتنا نفع ہوگا اتنی خیر ہوگی جتنا دھیان جتنا توجہ جتنا درد ہوگا اتنا زیادہ خیریں اور برکتیں ہوں گی اب اللہ کا ذکر شروع ہونے لگا ہے پہلے اللہ کا ذکر ہوگا پھر اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی اور اس کے بعد دم ہوگا میرے ساتھ پڑی ہیں تافیاں اور تسبیحاں یہ ان حضرات کے لیے جو یکم رمضان سے آخر رمضان عید تک تسبیح خانے میں کملی والے کے مہمانوں کی خدمت کریں گے یہ انہیں ہدیہ دیا جائے گا اللہ ہو Oh! يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذي القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار 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 يا رب العالمين اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما 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 اور ایسی جگہ سے پوری فرما جہاں سے گمان نہ ہو جہاں سے خیال نہ ہو اور جہاں تصور نہ ہو اے سخی آقا کبھی بھی ضرورتوں کے لیے در در کا بھکاری نہ بنا محتاج نہ بنا منگتا نہ بنا سائل نہ بنا اے سخی آقا کسی کے در کا سوالی نہ بنا مجبور اور بے بس نہ بنا اپنے در کا بھکاری بنا اپنے در کا منگتا بنا اپنے در کا سوالی بنا اے سخی آقا بیماریوں سے بچا دکھوں سے بچا غموں سے بچا مسائل مشکلات سے بچا اور ناکامیوں سے بچا علت ذلت اور قلت سے بچا نسلوں کی حفاظت فرما کفایت فرما کفالت فرما اور مدد فرما اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرما اور سچا گمان عطا کر دے بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما اپنی شان کے مطابق عطا فرما اپنی شان کے مطابق عطا فرما قرضداروں کے قرضے دور کر دے بیماروں کو شفا دے دے قیدیوں کو خلاصی دے دے اللہ مریضوں کو شفا دے دے روحانی جسمانی شفا دے دے اے سخی آقا جن کے گھر ٹوٹے ہیں بچا دے دل ٹوٹے ہیں بچا دے ان کے گھروں کو آباد کر دے ان کے گھروں کو شاد کر دے ان کو بامراد کر دے ان کو بانصیب کر دے الہی ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے جو ابھی مانگا پورا کر جو آئندہ مانگا پورا کر اپنے خزانے غیب سے عطا فرما اپنی وقت میں کلمہ نصیب کر دے ذلت کی موت سے بچا دے ذلت کی قبر سے بچا دے نسلوں کو بھکاری ہونے سے بچا دے تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما قیامت تک کے لیے فتنوں سے بچا ان نسلوں کو غلام اور خادم بنا یہاں کے لنگر ایسے ہی چلتے رہیں یہاں کے نظام ایسے ہی بڑھتے رہیں اور یہاں کا غیبی نظام ایسے ہی چلتا رہے اپنے غیب سے اسباب بنا دے فتنوں کے بغیر اسباب بنا دے فتنوں کے بغیر نظام بنا دے تسبیح خانے کو کبھی کسی کا بھکاری محتاج نہ بنا تسبیح خانے کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما اے سخی آقا ان رونے والوں کے آنسو تیرے خزانے میں بڑی قیمت رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے رونے کو قبول فرما، ان کی سسکے کو قبول فرما، ان کی آمین کو قبول فرما، ان پہ تیری بندیاں دور پر ایسے آئی بیٹھی ہیں اور پوری دنیا ہمارے ساتھ آمین میں شامل ہے، دعاؤں میں شامل ہے اور درس میں شامل ہے، اللہ پوری دنیا کی ضرورتیں پوری کر دے، پوری دنیا کی مشکلیں حل کر دے، پوری دنیا کی ناکامیاں ختم کر دے، دنیا کے ہر فرد کو اپنے جناب سے عطا فرما، ابھی منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ہماری جھولیاں بھر دے، مالا مال کر دے، رنگ و رنگ کر دے، شاد اور آباد کر دے، شاد اور آباد کر دے، شاد اور آباد کر دے، ہماری ہر ضرورت پوری کر دے، ہماری ہر مشکل حل کر دے اور ناکامیاں دور کر دے، پریشانیاں حل اپنے رب سے عطا فرما، بس من مانگے عطا فرما، بیٹیوں اور بیٹیوں کے غموں سے بچا، ان کی شادیاں ان کے گھر بسا، ان کی اولادیں اور ان کی جھولیاں آباد اور شاد کر دے، آباد اور شاد کر دے، آباد اور شاد کر دے، جو آیا اسے دے دے، جس نے آمین کہا اسے دے دے، جو دنیا کی جس کونے میں بیٹھا اسے عطا کر دے، اسے عطا کر دے، اسے عطا کر دے، اسے عطا کر دے، آمین 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 آمین. اللہ کسی کی آمین کے صدقے ہماری آمین قبول کر لے، کسی دکھیارے کی آمین کے صدقے ہماری آمین قبول کر لے، کسی مخلص کی آمین کے صدقے ہماری آمین قبول کر لے، کسی اپنے ولی اور دوست کی آمین کے صدقے ہماری آمین قبول کر لے، ہماری آمین کو رد نہ فرما، آمین 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 آمین. وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأهل بيته وإكرته أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.